यानी मेरे अंदर वो स्किल्स ही नहीं है कि मैं बच्चों के साथ घुलूँ मिलूँ, ठीक है ना। तो अगर ये कोई कहे कि नहीं मेरे अंदर आई डोंट हैव दैट थिंग,
मैं ये समझती हूँ पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ। माँ बाप के इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कीमती इसलिए दे इन्वेस्ट इनटू पीपल।
असर्टिव होने में और चीखने चिल्लाने में बड़ा फर्क है,
बहुत फर्क है।
और चीखने चिल्लाने से मेरे ख्याल मसले ज्यादा खराब होंगे, बच्चों का कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा।
जो सजा बराए इस्लाह नहीं है ना, वो सजा नहीं है, वो तो फिर इक्वल मुकाबला है ना। तो स्क्रीन एडिक्शन हमारा सबसे बड़ा मसला है
जी।
अब हम सबको नजर आ रहा है जो बच्चों के पूरी तरह दिमाग माउफ हुए पड़े।
खराबी ज्यादा मैंने ना उन बच्चों में देखी जिनको घर से जो है ना वो प्यार नहीं मिला या तवज्जो नहीं मिली है।
नई जो जनरेशन है वो बहुत तकलीफ में है, तो हमें उसके हार्ट को टच करना है। और मेरा ख्याल है पेरेंट्स से बढ़ के कोई भी इस पोजीशन में नहीं है जो हार्ट को टच कर सके।
अभी रिसेंटली आंटी हमें एक काउंसलिंग केस आया फीमेल साइड पे, तो जाहिर है कि मेरी वाइफ ने मुझसे शेयर किया कि एक मदर शी वॉज इन ग्रेट डिस्ट्रेस और उनकी टीनेज डॉटर्स हैं, माशाल्लाह दो डॉटर्स हैं उनकी, आप कह लें 16 और 18 ईयर शायद में भी ये एज ग्रुप है। तो शी टोल्ड समथिंग अमेजिंग इन द सेंस के यानी समथिंग अनबिलीवेबल, नॉट अमेजिंग एक्चुअली, शॉकिंग एंड अनबिलीवेबल, कि शी सेड कि मैंने अपनी बच्ची को बड़ा देखा कि वो मोबाइल की एडिक्ट हो रही हैं और ज़ाहिर है रात को सो नहीं रही हैं। तो शुरू में मैंने थोड़ा वॉर्न किया, आई ट्राई टू हेल्प हर वगैरह वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली उनकी आदत नहीं जा रही थी, तो आई स्नैच्ड हर मोबाइल अवे, मैंने मोबाइल जो है वो ले लिया उनसे। एंड शी सेड कि उसका जो रिएक्शन था दैट वॉज सो शॉकिंग टू मी कि शी टुक आउट अ नाइफ एंड शी सेड कि मैं अपने आप को मार दूंगी अगर आपने मोबाइल फ़ोन मुझे वापस ना किया। एंड शी मेंट इट एक्चुअली, मतलब जो नज़र आ रहा था उस पर गुबार। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इज़ दैट अ नॉर्मल टीनेज बिहेवियर, क्या वाकई एग्रेशन इस लेवल की होती है इमोशंस, या ये कुर्बे क़यामत की निशानियाँ हैं कि लोग मैथ साइकोसिस में चले जाएंगे। मैथ साइकोसिस को भी मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा ऑडियंस के लिए कि जब आप रियलिटी से बहुत दूर चले जाएं और एक पागलपन तारी हो जाए लोगों पे। तो बल्कि कई सोशल साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आज ह्यूमैनिटी मैथ साइकोसिस का शिकार, यानी फैंटसीज में रह रहे हैं, रियलिटी से बहुत दूर हैं, परसेप्शंस चेंज हो चुकी हैं, या ये पेरेंटिंग में कोई मिस्टेक है कि बात यहाँ तक पहुँच गई, व्हाट डू यू थिंक?
सबसे पहले तो बात ये है कि ये तो वाकई बहुत ही शॉकिंग है। तो लेकिन ये सुसाइडल बिहेवियर जो है या इतनी ज़्यादा एग्रेशन, मेरा ख्याल नाइफ निकालने वाला वाकया हो गया तो हम लोग एकदम विजॉल्टेड लाइक। तो लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो जो दूसरे वाकयात हैं, जो दूसरा रिएक्शन बच्चे दे रहे हैं
जी
इसके ऊपर, यानी इस वो जो वीनिंग ऑफ फ्रॉम द स्क्रीन है, मेरा ख्याल है वो उसके आस पास कहीं हैं। अब आपकी बात सुनते सुनते मुझे ख्याल आ रहा है कि एकदम वो जो पहले तो वो डोपामिन इतनी राइज पे है ना
जी,
और मैंने खुद अपने बच्चों में देखा है कि वो जब किसी तरह जबरदस्ती छीन छान के घसीट घसाट के तो किसी तरह उसको वो कर दिया जाता है तो विड्रॉल के सिम्टम्स उसी तरह आ रहे होते हैं, एकदम दे गेट वेरी डाउन और दे आर लाइक यू नो, मैं तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स ही कहूँगी। और ये है कि इसके अंदर किसी जगह पे रेजिस्टेंस जो है वो इस लेवल पे आ जाए कि डेस्परेशन इस पॉइंट को पहुंच जाए जो कि आप बात कर रहे हैं
जी जी।
तो इसका मतलब है ये है कि ये वाले वाकयात को इतने अनलाइकली भी नहीं है, क्वाइट एक्सपेक्टेड हैं। और जैसे कि हम उनकी दिमाग में होने वाली वो जो केमिकल बैलेंस की भी वो हम डिस्ट्रप्शन को समझ रहे हैं, ठीक है, जो इतनी ज्यादा स्क्रीन एडिक्शन ने जो पूरे के पूरे दिमाग के सिस्टम को खराब कर दिया है, मेरा ख्याल है इट्स क्वाइट लाइकली। देखिए आज का जो बच्चा है रिसर्चेस के मुताबिक उसमें जो एनजाइटी का इस वक्त लेवल है ना वो है जो पास्ट में ये फाउंडेशन हाउस या मेंटल हाउस में पागलों का होता था।
अच्छा।
जिनको लोग पकड़ के बंद कर देते थे।
okay.
मैं आपको रिसर्च की बात बता रही और अभी आपने कुर्बे क़यामत का भी लफ्ज बोला और आपको पता है कि एक हदीस है जिसमें बच्चों में गुस्सा
जी जी जी
उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा दिया, क्लियर इशारा दिया। और फिर ये जो बात है कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी, ये भी आप ये देखिए। तो बात ये है कि मुझे यही लग रहा है और मैं कुछ टीनेजर से बात कर रही थी तो मुझे उनसे बात करके खुद भी एहसास हुआ और दे ऑल्सो एडमिटेड कि ये लोग हर वक्त बेचारे ऑफेंड ही हो रहे होते हैं। जरा सी कोई बात होती नहीं है तो इनके दिल को ऐसे वो ठा करके लगती है कि दे आर अगेन क्लोजर टू दिस सुसाइड। बिल्कुल। तो हर वक्त ही बेचारे ऑफेंड हो रहे होते हैं, हर वक्त ही डिफेंसिव मोड में होते हैं. दे एक्चुअली आर नॉट नॉर्मल.
हाउ डिड दे आर नॉट नॉर्मल मतलब अपने खुद भी सेंसिटिव लोग हो गए, और बल्कि ज़ॉम्बी जनरेशन भी कहा जा रहा है आज की जनरेशन को भी, अल्लाह माफ करे. क्वालिटीज भी बहुत हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब हम होलिस्टिकली देखें तो इमोशनल रेजिलियंस इस लेवल पे कम है कि फीडबैक ना लेना, कोई थोड़ा सा डांट दे, कोई चीज़ आपसे ले ली जाए जो विच यू रियली वांट बैडली, तो गुस्सा चढ़ना, एग्रेशन में आना. तो वाकई आप सही कह रही हैं कि ये तो एक बहुत मैस लेवल पे ये फिनोमेना जो है वो.
फिर आप ये मुझे बताएं, आपका क्या ख्याल है, हम इसको फोर्स के साथ काउंटर कर सकेंगे? मेरा तो नहीं ख्याल.
सही,
यानी अब जो हो गई बिल्कुल, वो हमारी औलादे हैं,
बिल्कुल
हम भी उसी 21st century के लोग हैं
जी,
जिसमें वो रह रहे हैं, हम खुद उन फितनों का उसी तरह शिकार है, हमें खुद कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा. मेरा नहीं ख्याल हम फोर्स कर सकेंगे, हमें तो अडाप्ट ही करना पड़ेगा.
अडाप्ट करना
पड़ेगा. अब ये अडाप्ट पैसिव होगा या एक्टिव होगा, ये हमने डिसाइड करना.
वेरी इंटरेस्टिंग. और मैं यही चाहता हूँ कि 21st century के चैलेंजेस को सामने रखते हुए आपसे इंशाल्लाह कुछ पूछूं मैं, कि पेरेंटिंग हैज़ बिकम अ बिग चैलेंज. मैं भी देखता हूं, मतलब अपनी बहन को माशाल्लाह 2 बच्चे हैं उनके, तो काफ़ी वो उनके पीछे पड़ी रहती हैं, इन द सेंस के शी वांट्स के वो मोबाइल कम यूज़ करें. एक की उम्र 9 साल है, एक की 10 साल है, लेकिन बड़ा एग्रेशन आ रहा है बच्चों में ना. तो मैं ज़रा प्यार से थोड़ा हैंडल करता हूँ, थोड़ा उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आई थिंक के वो तरीका ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है, और मैंने उसके रिजल्ट्स भी देखे. बच्चे ना माँ को दुश्मन समझने लग जाते हैं कि ये तो हमारी दुश्मन है.
मुझे थोड़ा सा डिफरेंस करने दीजिए, आप प्यार से नहीं हैंडल करते और ना ही आप समझाते हैं, बल्कि आप कनेक्ट करते हैं. मैं आपको बताऊं, बच्चे भी इतने नहीं हैं, आप उनको टॉफियों के कैंडीज के ढेर के साथ आप कहने, मैं तुमसे चूंकि प्यार बहुत करता हूँ लिहाजा सुन लो, वो कभी भी नहीं सुनेंगे. लेकिन जब तक आप उनकी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, जब तक आप उनको समझेंगे नहीं, स्टीवन कोवी कहता है ना कि आप इन ऑर्डर टू बी अंडरस्टूड यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. आप जब तक आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आपके साथ बात कर लेते हैं. माँ जो है, मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही हूँ ना एक्यूज कर रही हूँ, लेकिन जितनी अपनी फ्रस्ट्रेशन है और जितना ज्यादा आगे से रेजिस्टेंस आ रही है उसके अंदर, शी हैज लॉस्ट हर बैलेंस. तो एट वन पॉइंट शी हैज टू बी के वेदर यू आर कन्विंस्ड और नॉट, जस्ट गो बाय माय प्लान, माय सिस्टम, दिस इज माय होम. ठीक है ना? और ये चीज जो है वो बच्चों को ज्यादा रिबेलियस कर रही है, और ये जनरेशन को अपने इंडिविजुअलिज्म के फितने का सबसे बड़ा शिकार है ये. जो इस वक्त फितना हर बंदे का ही है 21st century में रहने वालों का, लेकिन ये वाली जनरेशन तो फुल ऑफ देमसेल्व्स है. फिर आप इसको देखें कि इसको क्या है कि हमने जिस तरह करके ये जो न्यू नॉर्मल आया है, जिसको मैं तो उसको न्यू नॉर्मल का तर्जमा करूंगी फला युगैरुन खल्क अल्लाह, यानी वो अल्लाह का जो सारा सेटअप था, जो अल्लाह का ऑर्डर था
जी,
उसको जिस तरह करके डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये कमजोर तरीन मखलूक उससे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है. और ये जो बेचारे इनके साथ होता, ये नॉर्मल लाइफ इनसे छिन चुकी है. इनका दिमाग तेज है, बलूगत जल्दी हो रही है. बलूगत जल्दी हो रही है तो अमली जिंदगी में जल्दी आना पड़ रहा है. ठीक है, फिर ये है कि इनका दिमाग तेज है, जिस्म कम काम कर रहा है. जितने ये बेचारे अपनी वो एक बबल में रहकर ये स्किल्स से आ रही हैं, 17 साल तक हम दिल भर के उनको पैम्पर करते हैं.
सही.
ठीक है, हम उनको एक्सपोज होने ही नहीं देते. 18वें साल पे हम सबको फिक्र पड़ जाती है, ओ हो अब जाओ ना, अब अपनी जिम्मेदारी लो. तो फिर हम कहते हैं जाओ इस जालिम दुनिया के अंदर चले जाओ, जहाँ पे स्टैंडर्ड्स पहले की निस्बत कई गुना रेज हो चुके हैं, हमारी अपनी जात के लिए रेज हो चुके हैं, हम खुद थके पड़े हैं. इसीलिए तो हम उनके मसाइल की तरफ तवज्जो तो जब देंगे ना, हम अपने मसाइल से निकलेंगे. हम खुद आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, हमारा खुद विजन क्लियर नहीं है, हमें खुद लग रहा है कि शायद जिस माहौल के ने हमें इस बहाव में डाल दिया, शायद वही माहौल हमारी टेक केयर भी कर लेगा हमारे मसाइल की. और हमें लग रहा है कि शायद अच्छा फिर अगर नहीं तो फिर ये बच्चे ही इतने जहीन समझदार हो जाएंगे, मोहम्मद बिन कासिम बन जाएंगे जी, और जनाब क्या है कि वो पूरी की पूरी आगे उम्मत मुस्लिमा को संभाल लेंगे. मेरा ये ख्याल है कि रियलिटी में और फैंटेसी में बहुत लंबा चौड़ा गैप से ज्यादा नहीं हो गया.
बिल्कुल.
और देखिए, आपने अभी मैस साइकोसिस का लफ्ज बोला, उसमें भी यही बात है कि एक पार्ट ऑफ द इशू के पर इतने ज्यादा फोकस हो गए हैं कि रियलिटी जो है बहुत नजरों से दूर चली गई है.
ट्रू. आई टोटली एग्री विद यू. एक तो आपने जो बात की ना कि मदर्स के साथ भी एम्पथाइज हमें करना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई सी माय ओन सिस्टर तो वो भी बेचारी खपी होती हैं और शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट. इसी तरह हर मदर आई बिलीव के अपने लेवल पे शी इज ट्राइंग बेस्ट. वो ये भी अक्सर मदर सवाल करती हैं कि क्या पेरेंटिंग वाकई इतनी मुश्किल चीज़ है कि इसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं. और आपने दूसरी बात की आइडेंटिटी क्राइसिस की, ये बड़ा इशू है कि देखें हमें समझ ही नहीं है कि हमने कॉन्ट्रडिक्शन जो है ना वो बहुत देखने को मिल रही है. जैसे जाहिर है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत ही कोई एलीट क्लास स्कूल में पढ़ें और मैं वहाँ उन्हें पढ़ाऊँ भी और मेरे घर में भी ऐसे प्रोग्राम्स चलें और ऐसी चीज़ें और ऐसे फंक्शंस हों कि बच्चे एक्सपोज हैं उस माहौल के लिए. उसके बाद मैं फिर अचानक उनसे ये एक्सपेक्ट करने लगूँ जब वो 17-18 साल के हो जाएं कि अब ये टोटली इस्लाम की तरफ आ जाएं, समझ जाएं हर बात को. तो आई थिंक कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस के दे आर नॉट इवन श्योर कि हमने घर का माहौल कैसा बनाना है, हमारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, तो उससे भी आई थिंक बड़ा मसला जो है ना वो एक पैदा हो रहा है.
यानी वो जो उसको कहते हैं ना कन्फ्यूजन का शिकार, तो फिर हम बड़े भी हैं ना
जी.
एक छोटा सा केस भी आपके साथ रिलेट करना चाहूँगी क्योंकि लोग बात करते रहते हैं. अभी तक हम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, जो भी है परेशानी के अंदर अल्लाह का रास्ता सबसे पहले वाजे नज़र आता है. तो लोग जो है ना सबसे पहले अपना जो स्पिरिचुअल हीलर होता है उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, बाद में दूसरे लोगों के पास जाते हैं. आप ये देखिए कि मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया है, माँ वालदा और वालिद बहुत परेशान है अपने बच्चों के बारे में. जी हम पहले सऊदीया में रहते थे, हमारे बच्चे नमाज पढ़ते थे, हमारी बेटियाँ हिजाब लेती थीं, अच्छी बातें करती थीं, अच्छी बुक्स पढ़ती थीं, अब देखें अब हम यूके शिफ्ट हो रहे हैं, फिर हमारे बच्चों ने सुनना बंद कर दिया. तो मैं जब उनकी कहानी सुन रही थी तो मैं उसके अंदर सोच रही थी कि पेरेंट्स ने भी तो वही पाथ इख्तियार किया है ना, कह लीजिए इन द नेम ऑफ करियर कह लीजिए ना,
सही, सही, सही.
बच्चों का वो करियर है. उनके लेवल पर जाके देखें तो मेरा ख्याल है डू यू थिंक इट्स वेरी अनलाइकली कि सऊदी अरब में रह के एक पाक माहौल के अंदर बैठ के बच्चे और तरह से एक्ट कर रहे थे, यूके में आके बच्चे एक्ट डिफरेंट कर रहे हैं. प्रॉब्लम बच्चों में
नहीं, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन एनवायरनमेंट. और जाहिर है यूके और सऊदीया आप कंपेयर करें तो यूके में क्या वेव चल रही है, जाहिर आई नो दोज चैलेंजेस, मेरे बहुत से दोस्त हैं वहाँ पे, मेरे अपने रिलेटिव्स भी हैं, सारे परेशान.
पेरेंट्स भी तो ये चैलेंज रेजिस्ट नहीं ना कर पाए,
कंसर्न्स हैं जी,
ये रेजिस्ट कर पाए. आप यहाँ पे बैठ के सुनाइए जरा पेरेंट्स को कि उन इलाकों में जाने की ममानियत है. अल्लाह ने कहा वइदा रायत अल्लदीन यखूदून फी आयातिना, जब तुम देखो जो ये लोग अल्लाह की आयात के खिलाफ बातें करते हैं तो फला तक़ूद माहुम, इनके साथ बैठे ही नहीं. व इम्मा युन्सियन्नका शैतानु फला तक़ूद बादत ज़िक्रा, और किसी वजह से अगर कुछ देर के लिए बैठना पड़ जाए, शैतान ने बुला दिया, याद आने के बाद बैठो ही नहीं.
सही.
आपने भी तो साइड्स ली है ना, आपने भी तो एक चॉइस पिक की है.
इसमें एक काउंटर ओपिनियन व्यू आता है आंटी जो मैं चाहूँगा हम डिस्कस करें. मतलब मैंने कई लोगों को जो हिजरत करके आए यहाँ पाकिस्तान, उन्हें शिकायत करते देखा है कि हम एक्सपेक्ट करके आए थे कि यहाँ पे अब जो है ना वो बच्चे सेटल भी हो जाएंगे और बड़ा अच्छा होगा माहौल, लेकिन इवन दे आर नॉट हैप्पी. दे आर सेइंग कि यहाँ पे झूठ फरेब, मतलब वो पॉलिटिक्स और वो सियासत, जो जो मतलब एक कल्चर में हमारे आपको पता है नेगेटिविटीज पाई जाती हैं, और
पसमानदगी भी तो है,
पसमानदगी
भी है. आप इतने ऊंचे लेवल से आ रहे हो और यहाँ पे एकदम इस लेवल से आके आपको कोप करना मुश्किल है.
तो वो फिर यही कहते हैं कि यार इससे बेहतर तो वो उनका कल्चर है कि चलो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट है, वहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज देखने को मिल रही है, फहाशी एक अलग इशू. तो आई थिंक कि वो भी इस बात से ना बड़ा मुतनफर होते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज का भी हाल कोई नहीं. तो इस पे व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो ठीक है?
अल्लाह ने मुझे इसके बारे में, मैं भी ऐसा ही सोचती थी.
सही.
लेकिन अल्लाह ने मेरा दिमाग खोला मेरी एक छोटी सी क्लास के साथ. मुझे एक ऐसे बच्चों के साथ, लड़कों के साथ मुझे ज़्यादा मौका मिला है बैठने का. और मैं आपको बताऊँ लड़कों की अप्रोच समटाइम्स बड़ी क्लियर भी होती है. तो वो हुआ ये कि शायद 6th, 7th, or 8th grade था, और ना मेरे पास ज़्यादातर आ रहे थे बच्चे जो कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे यूरोप में. लेकिन
अच्छा.
फिर ये है कि इसी तरह पेरेंट्स नेक जो माँ बाप है वो माहौल की वजह से अपने बच्चों को लेके खलीजी ममालिक में आए. अभी हम गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें पता है पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत माहौल जो है वो डिफरेंट है. अच्छा, तो वो हुआ ये कि वहाँ पे बच्चे बात कर रहे हैं और बच्चे सारे अपनी बहुत डिसअपॉइंटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, टीचर भी साथ बैठी हैं, एक काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन हो रही है.
सही.
और ये कि बच्चे कह रहे हैं हम देखें यहाँ पे ये लोग कितार भी नहीं बनाते, ये जो अरब्स हैं ये इतना बुरा शाउट करते हैं, दे डू नॉट हैव द एटिकेट्स, दे कांट डू दैट, दे आर नॉट, और वो बड़ी अपने डिसअपॉइंटमेंट, हम तो यूरोप छोड़ के आए थे.
बिल्कुल,
अच्छा
बिल्कुल.
वहीं पर बैठे बैठे मुझे आज भी अपने उस बड़े अच्छे से स्टूडेंट का नाम याद है, हमजा उनका नाम था, उनकी शायद ओरिजिन था मेरा ख्याल है सीरियन थे वो.
सही.
और वो उन्होंने ही वहाँ पे बात शुरू की, कहने लगे कि ये है कि हमारी जो ग्रेड फाइव में जब हम थे ना, क्योंकि वो खुद एट ग्रेडर थे, कहने लगे ग्रेड फाइव में ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो ये ड्रग्स भी यूज़ करना शुरू कर देते थे वहाँ पर. पहले तो पढ़ाई अच्छी होने की बात होनी शुरू हो गई ना, फिर पढ़ाई अच्छी होने के साथ लड़कों ने एक दूसरे को आंखें मारी और साथ ये भी कहा. तो आपको पता है ना कि फिर वो याद है ना वो ग्रेड फाइव का फलां जो बच्चा था उसने तो डेटिंग भी स्टार्ट कर दी थी. अल्लाह ने किया वो बच्चे खुद ब खुद इस तक पहुंचे और मैं भी उनके साथ बात सुनते सुनते अल्लाह ने मेरा भी दिमाग खोला. हाँ, वो इतनी बड़ी बड़ी बुराइयों को छोड़ के इधर आए थे. यहाँ पर बुराई क्या है, कितार नहीं बनानी आती, खड़े होके बात नहीं करनी आती, वहाँ की बुराई देखे, ड्रग्स का एडिक्ट होना है आपका जो है, अल्लाह माफ करे जो इतनी छोटी उम्र में जो यूरोप इस वक्त मसाइल को देख रहा है, फिर आप उसके साथ देख, और वंस यू आर लॉस्ट फॉर एवर.
ठीक है, और अभी जो वहाँ ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी
एग्जैक्टली जिसमें वो आप बता रहे हैं, अभी हम लोग अपनी रिसर्च शेयर कर रहे थे, चौथी जमात के या चार पांच साल के बच्चों को पेरेंट्स की मर्जी के बगैर उठा के काउंसलिंग कराई जा रही है.
यूके के स्कूल में आंटी 76 स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइड एज ट्रांस. ये पियर्स मॉर्गन का एक वो लगता है गुड मॉर्निंग ब्रिटेन, उसमें वो प्रिंसिपल को बुलाया हुआ था कि आई एम शॉक्ड 76 बच्चा आपके स्कूल में कह रहा है मैं ट्रांस हूँ. उन्हें तो पता ही नहीं कि असल में ट्रांस होता क्या है, और दे डिसाइडिंग कि दे आर ट्रांस,
और स्कूल अपने तौर पर डिसाइड कर रहा है कि दे आर ट्रांस.
काउंसलिंग कर रहा है स्कूल तो कह रहा है कि वी शुड सपोर्ट देम. तो ये चैलेंजेस पेरेंट्स को मेरे ख्याल इतने आगाही नहीं है इसके बारे में.
जिन पेरेंट्स ने रेलोकेशन की थी उन लोगों ने एक बड़ी कुर्बानी दी थी. हम सब जानते हैं यूरोप में जो फैसिलिटीज के नाम पर हमें जो जिंदगी मिलती है वो नेक्स्ट टू जन्नत होती है.
सही,
ठीक है ना. लेकिन आप देख लीजिए जिन लोगों को अल्लाह ने अकल दी है उन्होंने इस फर्क को समझा और उन्होंने बार्गेन किया है बड़े नुकसान से बच के छोटे नुकसान का. अगेन गली गंदी है ना,
सही,
गली गंदगी कपड़े तो ना पाक नहीं है ना?
और शुरू में मुश्किलात आई होंगी, बहुत आई होंगी, लेकिन मेरे ख्याल बाद में दे देमसेल्व्स मे बी रियलाइज्ड कि इट वाज अ गुड डिसीजन.
आप छोड़िए मोहम्मद अली, मेरी अपने जानने वालों की कहानियां, सिखों से शादियां हो गई.
सही,
बहुत सारे लोग हमें आके कहते हैं ओहो कनाडा में तो माहौल पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, वहाँ पे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है. जी वो आप यूके की तो बात ही ना करें, वो तो हमारी मुसलमानों की कम्युनिटी अलग है. और अमेरिका में हमें तो कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई. ये बिल्कुल यही बात है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ही बुरे लफ्ज़ बोलने लगी हूँ कि जी मैं तो इतनी देर से जो है बदकरदारी का शिकार हूँ, हमें तो कभी अबॉर्शन और वो प्रेगनेंसी का सामना ही नहीं करना पड़ा. ये वो वाली चीज़ है. डू यू थिंक कि दिस इज़ द रियलिटी? और फिर जब मैंने उन बच्चों की बात सुनी, देखिए वो बच्चे एक कंपैरिजन कर रहे हैं रियलिटी की बेसिस पे, तो एकदम उनको भी समझ आ गई कि हम कितने बड़े फितने को हाथ लगा के छोड़ के आए हैं और हमने उसकी जगह पे छोटे फितने को अख्तियार किया.
अब मैं चाहता हूँ सिचुएशनल थोड़े सवालात आपके सामने रखूँ ताकि इस पे डिस्कस हो जाए. जो हमें क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज एक कपल जो है वो रिलीजियस हो गया, अभी दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इस्लाम, अब उनकी अव्वलीन ख्वाहिश है कि उनके बच्चे भी फौरन से आ जाएं, उनको क्या वो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि उनके बच्चे कहीं रेबेलियस ना हो जाएं या बिल्कुल ही उनको देख के आउट ना हो जाएं? क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है कि जब पेरेंट्स आते हैं ना इंस्टेंटली, अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे भी इंस्टेंटली जो है ना वो हमारी तरह के बन जाए. तो प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए कीपिंग इन माइंड द चैलेंजेस आज के जो है?
अच्छा, इसमें मैं दो बातें कहूंगी. आपकी बात सुनते ही मेरे जहन में भी आ रहा है कि पेरेंट्स को क्या रवैया अपनाना है. सबसे पहली बात यह है कि पेरेंट्स का जो विजन है ना दीन की तरफ आने का, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए. ठीक है, ये देखिए पिछले दोनों हॉलोवीन की हमारी जब तकरीबात हो रही थी, तो उसके अंदर जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमारे सामने केरल का नोखी का आया, शी यूज टू बी अ फॉर्मर विच. ठीक है, क्रिश्चियन है.
okay.
और की बड़ी जबरदस्त, बड़ी मौसर उनकी वीडियोस हैं हॉलोवीन के अगेंस्ट में. उन्होंने उसके जब सॉल्यूशंस की बात की तो बड़ी जबरदस्त बात की. कहने लगे अपने बच्चों को बिठाओ,
सही,
अपने बच्चों से डायरेक्ट बात करो. बाजत तुम एम्बिग्यूटी के शिकार हो रहे हो तो तुम्हारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं. अपने बच्चों से बैठ के बात करो, तुम्हारे बच्चे समझेंगे उनको.
सही.
उनके साथ रैशनल लेवल पर जो है ना कनेक्ट करो. अच्छा, हमारी एक बहुत बड़ी गलती है जो हम पेरेंट्स की, और मैं आपको बताऊँ ये चेंजेस बहुत तेजी से आए हैं. यही वजह है कि एक जो नेचुरल जनरेशन गैप है ना, जो शायद इतना बड़ा कोई अहद का एरा का तो गैप नहीं है ना, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ये तब्दीलियाँ इतनी तेजी से रोनमा हुई हैं कि आप ये देखें जेन जी है, फिर आपकी वो जो मिलेनियल्स हैं, इन सब के दरमियान आपका, आपने नोट किया कि वक्फा छोटा होता चला जा रहा है. अगर आप उसकी वो टाइमलाइन निकालें तो फ्लां से फ्लां सन से लेके फ्लां सन तक ये आ रहे हैं, उसके बाद आगे आ रहे हैं, वो वक्फा उसके एकदम छोटा होता चला जा रहा है. तो बात यह कि पेरेंट्स को अडाप्ट करना पड़ेगा चेंज के साथ. आप देखिए आपके बच्चों के पास वो हौसला नहीं है, और मैं वो कहा करती हूँ कि वो वकूफ जो हमारे यहाँ बेवकूफ के ऑपोजिट है ना, वो जिसको कहते हैं ना पहले सोचो पहले तोलो फिर बोलो
वाला,
एनालिटिकल एबिलिटी, वो हौसला वो तहमुल नहीं है, हमने वो स्किल्स डेवलप उनके अंदर नहीं की है. अब उनसे अगर आप ये एक्सपेक्टेशन करो कि वो तेजी तेजी के साथ ठीक है आपके साथ वो चल पड़ेंगे, वो नहीं चलेंगे. यहाँ पे आके पेरेंट्स को अपनी सारी प्रोफेशनलिज्म को वापस लाना पड़ेगा. सबके सब कामयाब बिजनेसमैन हैं, सबके सब कामयाब प्रोफेशनल्स हैं, दे नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म. लेकिन क्या कि घर की बात आती है तो वो बोगस और वो वाली कहानियां होती है. तुम्हारी उम्र का मैं होता था ना तो मैं ऐसा था. अब अव्वल तो उनमें से ज्यादातर झूठ होता है, ठीक है. वो लतीफा मुझे याद आ गया ना, वो एक साहब जा रहे थे तो वो एक पत्थर रस्ते में आया तो उसको हिलाने विलाने की कोशिश की, नहीं हिला तो कहने लगे अरे होती जवानी ना तो पता नहीं मैं इसको उठा के क्या कर देता. जब देखा आसपास कोई नहीं तो अपने आप से कहा जवानी में कौन सा तीर मारा था. तो ये कहानियां तो वो ही
है.
लेकिन बात है कि इतनी एब्जर्ड किस्म की एक्सपेक्टेशंस और ये वो, एक मिनट, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज. और ये है कि अगर आप अपने विजन को खुद क्लियर पहले तो करो, दूसरी बात है जिम्मेदारी महसूस करो. आप बड़े हो, कनेक्ट आपको करना है, बच्चों ने नहीं करना.
अगर एक सेंटेंस में आप ये मिस्टेक को हाईलाइट करें, इज इट लैक ऑफ पेशेंस, क्या है ये, वेयर आर द लैक?
मैं ये समझती हूँ पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ.
अच्छा.
उन्होंने समझा कि शायद ये भी कि वो जो है ना एक लॉजिकल आउटकम है कि हैविंग सच ब्रिलियंट चिल्ड्रन. ऐसा नहीं होता.
सही.
बच्चे बनाने पड़ते हैं, यही वजह है माँ बाप की इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कीमती, इसलिए दे इन्वेस्ट इनटू पीपल. यहाँ पे पीपल आर इन द मेकिंग.
बिल्कुल.
और जो है ना उन पीपल को मसला, एक सारे पेरेंट्स कहते हैं अच्छा बच्चे को बच्चा समझे, कोई बच्चा बच्चा नहीं होता. वैसे मैं आपको बताऊं एंशियंट टाइम्स का भी बच्चा बच्चा नहीं होता. हम कहते नहीं है साइकोलॉजी के लिहाज से बच्चा जो है वो इंसान का बाप होता है. वो सारे एग्जैक्टली वही रवैये होते हैं जो एक महीने के बच्चे के अंदर होते हैं, जो कि 60 साल के बंदे के अंदर होते हैं. सिर्फ इतना होता है कि 60 साल के बंदे को उनको कवर करना आता है, उनको जरा थोड़ा सा डिफरेंट वे में डिस्प्ले करना आता है. एग्जैक्टली रवैया तो एक नहीं बदलता. अपने पॉलिटिशियंस को देख ले, इनसे ज्यादा कोई बड़े बच्चे हैं.
रवैयों के हवाले से ना मैं कुछ कॉमन टीनेज प्रॉब्लम्स आपको इंशाल्लाह बताता हूँ और फिर हम डिस्कस करते हैं. लेकिन उससे पहले मुझे एक वो एक और केस स्टडी याद आ गई. हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं एंड दिस कपल माशाल्लाह दे केम टू दीन, दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दीन. अब इनकी जो बच्चियाँ थी ना वो एक स्कूल में पढ़ रही थी, LGS 55 में पढ़ रही थी. तो बकायदा उन्होंने मुझे एक दिन बताया, बल्कि हम सब से वो बात कर रहे थे, कहते कि डू यू नो कि हमें किस किस तरह के चैलेंजेस देखने पड़े हैं. ही सेड कि मेरी बच्ची जब ए लेवल ओ लेवल कर रही थी वहाँ से, तो शी यूज़ टू क्राई और अपनी मदर को कहती थी कि मामा आप ना प्लीज़ निकाब में मत आइएगा, मेरी ना क्लास फेलोज मजाक उड़ाती हैं मेरा और मुझे बड़ी शर्मिंदगी फील होती है, आई रियली फील एम्बेरस. तो ये सेट के हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि बच्ची जो है वो देखें इस्लामी जो एक वो है जाहिर अटायर उसके हवाले से एम्बेरस हो रही है और बहुत रो रही है, अपनी मदर को कहती है कि ना आया करो. तो कहते हैं मैं जाता था, इसकी मदर नहीं जाती थी PTC पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में. हाउएवर ही सेट के नाउ आफ्टर यू नो 5, 6, 7 ईयर माशाल्लाह शी इज़ प्रैक्टिसिंग हिजाब, वो बच्ची खुद और उसको समझ आ गई खुद से. तो मेरा ख्याल वो लेसन ये देना चाह रहे थे कि चिल्ड्रन वी शुड गिव देम टाइम, वी शुड नॉट रिएक्ट इंस्टेंटली. यानी यहाँ पे अगर रिएक्ट कर देते कि ये क्या बात हुई, ठीक है ना, और एकदम से पैनिक मच जाता, तो आई थिंक कि बच्चा उसकी अभी एनालिटिकल एबिलिटी वो डेवलप नहीं है, उसका जो देखने का तरीका है ना दुनिया को वो बड़ा शैलो है. और ये साइंटिफिक है आंटी, आपको पता होगा कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो अभी उनका सही से डेवलप ही नहीं हुआ,
तो प्यूबर्टी के बगैर पहले होते ही
जी बिल्कुल. तो देखें कुछ कॉमन टीनेज बिहेवियर्स होते हैं जिनको ना हम एक्सट्रीम समझ लेते हैं. हमारे कल्चर में ये एक प्रॉब्लम है. जैसे
मतलब फिर विजन इख्तियार कर लेना एक अलग चीज है, उसमें अमल कर लेना उसके अंदर भी एक बहुत लंबा चौड़ा फासला है. ये ठीक है, हो सकता है वो बच्ची जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इसको अंडरस्टैंड तो करती हो क्योंकि घर का माहौल दीनदारी का है और जाहिर है पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, समझाते होंगे. लेकिन एक चीज को अंडरस्टैंड करना और एक चीज को फेस करना
जी.
मेरे आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता, हम कितने कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं माहौल के मुताबिक. तो एक बच्चा तो बेचारा बच्चा ही है ना.
ट्रू ट्रू. तो एक कॉमन टीनेज बिहेवियर है कि आर्ग्यूमेंट बहुत देना, आर्ग्यू बहुत करना, बिकॉज वो केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं. बच्चा जो है ना वो चाह रहा होता है मैं बड़ा बन के दिखाऊं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, ये क्यों मुझे इतना ज़्यादा वो करते हैं वगैरह वगैरह. तो दैट इज़ वेरी कॉमन. पेरेंट्स उसको बदतमीज़ी, मैं समझता हूँ, उसका नाम ना दें और पेरेंट्स उस पर ना पैनिक हों. हाँ, वो रेड लाइन तब बन जाएगी जब वो हर बात पे आर्ग्यू करने लगे और एग्रेसिव हो जाए, जैसे ये जो बच्ची थी उसने छुरी निकाल ली. तो जाहिर है कि दैट इज़ दी रेड लाइन. ये एक ऐसी बात है जहाँ पे कान खड़े होने चाहिए आपके. दूसरा मैं पढ़ रहा था, कॉमन टीनेज बिहेवियर ये है कि चिल्ड्रन दे विल मेक मिस्टेक्स अल्टीमेटली एंड दे विल लाइक टू लर्न फ्रॉम इट. और ऑब्वियसली एक और कॉमन टीनेज बिहेवियर मैं पढ़ रहा था कि जो भी चीज़ फैशन में चल रही होगी ना, जो ट्रेंड और हैशटैग, जो भी चीज़ मशहूर होगी, उसकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे एंड दे विल लाइक टू डू दैट फैशन. शायद बाल रंग लें, शायद कोई जो है ना वो रिंग पहनना शुरू कर दें, चेन पहनना शुरू कर दें, या गर्ल्स के अपने फैशन होते हैं वगैरह वगैरह. तो वहाँ पे भी मेरा ख्याल अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग करने की ज़रूरत है आई बिलीव, या उनसे डिस्कशन करने की ज़रूरत है, आर्ग्यू करने की ज़रूरत है. तो डू यू थिंक कि ये जो टीनेज बिहेवियर्स हैं कॉमन, इनको जब हम समझते हैं कि ये एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं और ये नहीं होने चाहिए, तो तब मसाइल आई बिलीव ज़्यादा जो है वो बढ़ते हैं.
असल में बात ये है कि आपकी सारी बात के दरमियान अगर आप ये कहना कि पेरेंट्स नीड टू बी पेशेंट, पेशेंट होने का मतलब ये कतन नहीं है कि पेरेंट्स समझे सब ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि समटाइम्स सब ठीक नहीं होता. डिविएशन वहीं से किसी जगह से ना ऐसी डर ले लेती है कि उसकी क्योर नहीं हो सकती. इसलिए पेरेंट्स के ऊपर बहुत वो खुद बहुत लाइक नुक में है, बहुत क्रिटिकल लम्हात हैं उसके अंदर, वो कर भी कुछ नहीं पा रहे हैं. और ये है कि येट दे हैव टू डू समथिंग बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग, दे आर आफ्टर ऑल पेरेंट्स. तो अब ये है कि इसके साथ मैं आपको बताऊं, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी. हौसला तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन देखिए इस बात को हमें समझना है, हम पेरेंट्स हैं. और मैं आपको एक बात बता दूँ, बच्चे अपने आप को जितना मर्जी पोज करें ना कि वी आर इंडिविजुअल्स और टेक दम एज इक्वल्स, They don't think of themselves as equals. क्योंकि वो पता है ना, जरा बात आ जाती है ना इक्वल्स की, मैं अपने डिसीजन खुद करूंगा. तो अगर फादर ये कह दे कि ठीक है मैं अलाउंस ही देना बंद कर दूंगा, तो वहां पे उसी की हवा निकल जाती है. तो फैक्ट्स आर फैक्ट्स. और मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स के पास एक बहुत बड़ा टूल है कि जी हम, मैं तुम्हारी ब्रेड एंड बटर का जो है ना जिम्मेदारी अभी भी लेता हूँ. हर बात कहने से नहीं होती है, अपने एहसास दिलाने से होती है. इसका मतलब है कि स्टिल दे हैव द अथॉरिटी. और यही बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कही है, वला तुतु सुफहा अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन. और अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो बेवकूफों के हाथ में अपनी अथॉरिटी ना दे देना. है तो ये माल के मामले में अथॉरिटी, मैंने उसको इन जनरल अथॉरिटी में ले लिया. और साथ का कि इनको कौलम मारूफा, इनकी तरबियत करते रहो, ठीक है. तो बाद आफ्टर ऑल फादर और मदर्स दे बोथ आर दी जो हैं जिनके पर बच्चे डिपेंड करते हैं. बाकी ये है कि इस डिपेंडेंसी को कोई एम्प्लॉय से तो नहीं डील कर रहे ना आप, आप डील कर रहे हैं अपनी औलाद से जो बाय डिफॉल्ट आपकी वारिस है. इसीलिए तो अल्लाह ने औलाद नहीं ना पकड़ी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हो जाता है, उसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं होती है. इसीलिए अल्लाह ने दोस्त बना लिए हैं, अल्लाह ने अपने मुहिब जो है ना महबूब अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह ने औलाद नहीं पकड़ी, ठीक है. और ये एक बहुत बड़ी एक नुक्ते की बात है. और अल्लाह औलाद के नाम पर सीखवा होते भी इसीलिए,
बिल्कुल,
कि औलाद जो है वो खुद ब खुद वो आपकी जो है ना थ्रोन के अंदर हकदार होती है, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट. तो बात असल में कि पेरेंट्स को बाकी इसको डोंट रब दिस इनटू देयर फेसेस, लेकिन लेट अस यूज दिस टूल. हम आज भी सिस्टम मेकर हैं. अच्छा, और आपको मैं बताऊँ, इसी दौर में, मेरे और आपके दौर में, जब हम अपने आप को सो हेल्पलेस समझ रहे हैं, देयर आर दी पेरेंट्स जिन्होंने पुट अपने फुट को पुट डाउन किया है एंड दे हैव टेकन देयर जो है ना. लेकिन ये कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. आपका दिल करे कि मैं सोते सोते घर से अपने कारोबार से कम थक के आऊँ और अपना वो टीवी का रिमोट हाथ में लिए लिए एक दो सीतें करूँ और मैं कहूँ कि मैंने बाप का किरदार अदा कर दिया. और या फिर अगर मुझे ज्यादा ही जरूरत पड़े, मेरी बीवी ज्यादा चिख चिल्ला रही है, तो एक रख के थप्पड़ अपने 14-15-18 साल के लड़के के मुंह पे लगाऊं और मैं कहूँ आई एम द फादर, एक्सेप्ट माई अथॉरिटी. इट डजंट वर्क दिस वे. इट डज नॉट वर्क दिस वे. बच्चों के साथ लगना पड़ता है. बच्चों को कन्विंस करने के लिए आपको वो सारी स्ट्रेटेजीज, वो सारी स्किल्स इख्तियार करनी पड़ती हैं जो आप अपना जो क्लाइंट जो है उसको घेरने के लिए करते हो. आपको बिहेवियर बिहेवियर मॉडिफिकेशन की स्किल्स को सीखना है, आपको रिटोरिक सीखने हैं, आपको अपने आप को ग्लोबलाइजेशन के साथ अपडेट करना है, आपको पता ही नहीं आपके बच्चे कौन से ड्रामे देखते हैं, कौन से कार्टून देखते हैं, किस जगह से अपने आप को कनेक्ट करते हैं. अगर आप उसे कनेक्ट ही नहीं होगे तो डायग्नोसिस कैसे होगा?
एब्सोल्युटली.
जब डायग्नोसिस ही नहीं होगा तो फिर इलाज कैसे होगा?
अच्छा, यहाँ पे कुछ कपल्स आंटी कहते हैं कि हमें वो स्किल्स ही नहीं, हम क्या करें, हम इंट्रोवर्ट्स हैं. जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया, मदर काफ़ी बातें करती थी अपने बच्चों से. मैंने कहा इनके फादर का क्या रोल है? कहती कि वो कोई बात नहीं करते, बस उनका यही रोल है ब्रेड विनर का, आते हैं और बस पैसे दिए और फीस दी और बस. मैंने कहा आप उन्हें कहा करें? कहती मैं कहती हूँ तो वो कहते हैं मैं क्या बात करूँ, यानी मेरे अंदर वो स्किल्स ही नहीं है कि मैं बच्चों के साथ घुलूँ मिलूँ. ठीक है ना, तो अगर ये कोई कहे कि नहीं मेरे अंदर आई डोंट हैव दैट थिंग, तो ये बात मेरा तो नहीं ख्याल दुरुस्त है, क्योंकि वी लर्न एवरीथिंग.
मेरे पास वो स्किल्स ही नहीं थी जिस जॉब पे आज मैं बैठी हूँ, मुझे कोई कबूल कर सकता. लेकिन जब मैंने मार्केट को देखा तो फिर मैंने जल्दी जल्दी वो स्किल्स एक्वायर की थी ना, मुझे पैसे चाहिए थे. तो क्या मेरी औलाद इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है?
बेशक,
मेरा तो ख्याल है मेरा सबसे बड़ा एसेट ही है.
सुभान
अल्लाह. और कितनी अजीब बात उन्होंने कह दी कि मैं क्या बात करूं. अगेन मैंने आपसे कहा था ना लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने मुझे पूछा एक लफ्ज बताए.
सही.
रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेंगे तो विल होगी तो वे खुद ही निकल आएगा. देखिए ना, बात ही सारी ये है कि यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग.
जी जी.
तो फिर अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे. ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, अल्लाह किसी माँ बाप को देखना दे. मेरे पास पिछले दोनों केस आया है, दोनों भाई बेटियां जो है ना जरा जल्दी कंट्रोल में हो जाती है, सब बेटियां अच्छी चल रही हैं. दोनों भाई बेरा रवि के रास्ते पे चल गए और बेटी जो है ना बहुत ही फादर की हमदर्दी करके मुझे आंसू भर के कह रही थी, अब्बा तो उनको कह कह के अब तो शुगर के मरीज हो गए हैं. मैंने कहा आपके अब्बा बहुत बूढ़े हैं? कहीं नहीं बूढ़े नहीं है, एक दो साल ही बस रिटायरमेंट में रह गए हैं. मेरा ख्याल है कि 62-63 साल का मर जो है तो कभी बुढ़ा माने पर तैयार ही नहीं होते. तो ये बुढ़ापा एकदम जिम्मेदारी के नाम पे कैसे आ गया? जी वो बड़े भाई जो हैं वो तो शादीशुदा भी हो गए, कमाते भी कुछ नहीं है, बाबा ही उनको सब सपोर्ट करते हैं. मैंने कहा आपके बड़े भाई रोटी की बुरकी अपनी और अपनी वाइफ के लिए अपने फादर के मोहताज है, येट फादर इज अनएबल एंड टू पावरलेस टू से एनीथिंग. एक तो दोबारा सोचिए कि गलती कहाँ पे आ रही है ना. और मैं आपको बताऊं, बेचारी हमारी जो औलाद है, they are looking up to us. हम उनके लिए रोल मॉडल थे और वो देखते हैं कि उस कैओस का तो हम उससे बड़ा निशाना बने हुए हैं. तो they pretend to be strong enough, to be decision maker. They are not.
एक प्रॉब्लम और आ रही है आंटी के बच्चे बहुत ये फील करते हैं, मैंने जिनकी काउंसलिंग की, कि हमारे पेरेंट्स ना हमें इंसल्ट बहुत करते हैं रिश्तेदारों के सामने, दूसरों के सामने, हमें बुरा फील कराते हैं, हमें विलन बना देते हैं. जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक शरारती बच्चा है आपकी क्लासरूम में, आप टीचर हैं, तो एक तरीका ये कि आप उसको विलन बना दो, आप कहो कि इसके साथ कोई ना बैठे और उसको ना मतलब फुल बुरा फील कराओ. दूसरा ये है कि आप उसे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उसे आगे लाओ, उसको अप्रिशिएट करो. तो यहाँ पेरेंट्स की मिस्टेक है कि उसको विलन बना दिया उस बच्चे को.
अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा सा प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं. हम टीचर्स हैं ना, आप भी हैं और मैं भी हैं, हमें ऐसे एक बच्चा नहीं, हमें बहुत सारे बच्चों का सामना होता है. तो फिर हमें जब समझ आ जाती है कि ये हमारी तकदीर है और हम इसको लेफ्ट आउट नहीं कर सकते, फिर हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने की कोशिश करते हैं. हम उसके लिए कोशिश कर डिफ्रेंसिएशन, और फिर इंक्लूजन की थ्योरी जो है, जो आजकल ऑटिस्टिक लोगों को आउट नहीं करने दे रहे, तो कुछ आके ये बच्चे जो है अभी नॉर्मल के रेंज में आते हैं, उनको भी, उनको कैसे आउट किया जा सकता है. अगेन मेहनत रिक्वायर्ड है और जो है ना थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स रिक्वायर्ड है. हम टीचर्स का कितना अच्छा दिल करता है वो जो लेक्चर तैयार किए बस आके वो दे के तो आराम से जो है ना वो कॉपियां चेक कर ले. ऐसा नहीं होता, आपको पता ही है कि किस तरह से करके क्लास में मौजूद डिफरेंट जो वो लर्निंग स्टाइल्स है उनके साथ निपटना पड़ता है और हमें पता लग रहा होता है. ये भी चीज इननेट है. मैं आपको सच्ची बताऊं, टीचिंग और लर्निंग ये दोनों इननेट है. जैसे हंसना और रोना गाना सबको आता है ना, लर्निंग भी सबको आती है और टीचिंग भी सबको आती है, बाकी रिकॉग्नाइज करना होता है. तो बात ये है कि सोचिए इस बात को. वैसे मैं एक थोड़ी सी बात इसमें कहूँ, आपने कहा ना कि बच्चे कहते हैं हमें पेरेंट्स बहुत डिग्रेड करते हैं, उसकी वजह कुछ ये है. इतना ज्यादा उसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है. हमने शुरू में ये बात कही थी कि ये जो जनरेशन है ना, ये बेचारी बहुत स्लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है, और ये बहुत ही हसास है.
सही बात.
और ये जो है ना मुस्तकिल इसको हर चीज ऑफेंस कर जाती है. अभी हम जा रहे थे तो वो एक खातून ने कोई गलत सिग्नल विग्नल काटा, तो मैंने कहा ये खातून होंगी ना, तो वो मेरे साथ मेरी इसी तरह टीनेजर बेटी बैठी हुई, कहने लगी अम्मी अगर उसको पता लग गया ना अकॉर्डिंग टू द न्यू नॉर्मल, इसको खातून तो कहना ही नहीं था, वो ही और शी, वो प्रोनाउंस का मुझे झगड़ा चल रहा है ना, तो उसको पता चल गया आपने खुद ही अज्यूम कर लिया कि वो ऐसा. तो बात असल में ये है कि ये जो है ना थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से हमें भी बचना चाहिए. डोंट गेट टू, ये जो चैलेंजेस हैं हर माँ बाप और पास्ट के भी माँ बाप इसका शिकार थे, सिर्फ ये क्या चैलेंजेस ने शक्ल बदल ली है.
यानी एम्पैथेटिक अप्रोच आप समझती हैं ज्यादा बेहतर है कि उस समझा जाए उनके शूज में आके कि इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है. इनकी बायोकेमिस्ट्री
ऐसी, ये टू सेंसिटिव हैं, हकीकत इतनी नहीं है जितना वो फील कर रहे हैं. क्योंकि देखे माँ बाप के कहने को eventually कोई भी बुरा नहीं मानता. मैं हमेशा कहती होती हूँ मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इस बात का कि आई लव यू. डोंट बिलीव कि आई लव यू, ठीक है. लेकिन ये है कि जो ये एक ऐसी चीज और अल्लाह ने बनाई है, फौरी तौर पे जब ये मुश्किल इयर्स गुजर जाते हैं ना तो बच्चे कभी शिकायत नहीं करते. और मेरा ख्याल है दिस इज द बेस्ट रिवॉर्ड फ्रॉम देयर साइड.
ओवर सेंसिटिव बच्चों को कैसे डील किया जाए आपकी नजर में? प्यार दिया जाए बहुत ज्यादा, वो तो उससे भी बिगड़ जाएंगे, मजीद ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे.
आपको मैं बताऊं, अब चूंकि हम हर वक्त ये ऑटिस्टिक बच्चे हमारे सामने आ रहे होते हैं, ये सारे जो लोग जो मेंटल डिसऑर्डर के मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ओवर सेंसिटिव नॉर्मल हदूद के अंदर वाली बात नहीं कर रही हूँ, जो नॉर्मल हदूद के अंदर ही हर लड़का ही जो है ना वो उसका अटेंशन डेफिसिट का शिकार होता है, हर जो है ना टीनेजर ही ओवर सेंसिटिव होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ. हमारे यहाँ जो वाकई सीरियस डिसऑर्डर्स के साथ आ रहे होते हैं, बाइपोलर हैं, नार्सिसिस्ट हैं, ये सब लोग, इनके लिए क्या है डिसिप्लिन, इनको डिसिप्लिन में लाना है. और कोई टोटल इंस्टीट्यूशन, टोटल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो कि बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, सम टाइम ऑन अ एग्रेसिव लेवल और सम टाइम ऑन अ माइल्ड लेवल. आपकी जो मस्जिदें हैं ये भी टोटल इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल्स टोटल इंस्टीट्यूशन, सेमी टोटल इंस्टीट्यूशन हैं, जेल खाने असल टोटल इंस्टीट्यूशन हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स असल टोटल इंस्टीट्यूशन हैं. तो मैं ये समझती हूँ कि एक बच्चा जो है ना उसकी वो डिजर्व करता है कि एक घर के लेवल पर इसको एक अच्छा सिस्टम का डिसिप्लिन का माहौल दे दिया जाए. और मैं आपको बताऊं, हम इंसान जो है ना हम निज़ाम को पसंद करते हैं, हम सब के सब. अगर हम सम हाउ पेरेंट्स बच्चों के डिसरिगार्ड ऑफ देयर लाइकिंग और डिसलाइकिंग अगर हम एक सिस्टम बना लेना तो चिल्ड्रन गो बाय देम.
नहीं लेकिन वो पेरेंट्स अगर कहें जी कि हमने सिस्टम बनाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने छुरियाँ निकाल ली जैसे वो एग्जाम्पल आई, तो इस केस में मेरे ख्याल वो छुरी एकदम तो नहीं निकली ना, वो तो उसके पीछे बिग बैकग्राउंड होगा. आई डोंट थिंक सो कि इट हैपेंड लाइक दैट कि जी डिसिप्लिन माहौल था और अचानक से वो एडिक्ट हो गए मोबाइल की. और उसके
बाद मैं अपने बच्चों को रेज कर रही थी ना तो मैं जमाने में सुपर नैनी बहुत शौक से देखा करती थी. सुपर नैनी जो है ना वो एक रियलिटी शो है ब्रिटेन का, और मैंने उसे बहुत कुछ सीखा था. आप यकीन कीजिए वो एक हफ्ते का देती होती थी, उसका प्रोजेक्ट वो लिया करती थी, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो लोगों को अपने हवासों में वापस ले आती थी, एक दफा करके दिखा देती थी, बाकी वो कहती थी अब बाकी तो तुम्हारी अपनी विल पे है कैसे करते हो. तो वो क्या करती थी, जाते ही ना वो सबसे पहले क्या करती थी, सारी फैमिली को बिठाती थी, सारे बिगड़े बच्चे होते थे. अच्छा उसके तो बिगड़े बच्चों में टोडलर्स भी होते थे, टोडलर्स के साथ कम्युनिकेट करना कितना मुश्किल है ना, लेकिन वो उनको सबको बिठाती थी और वो जल्दी से दो या तीन रूल जो है ना वो चौक आउट कर देती थी, इस वक्त पे ये करना है, इस वक्त पे ये करना है, और ये सारी फैमिली के उसके साथ होती थी, वो रूल्स यहाँ पे लगा देती थी. उसके बाद वो दो या तीन दिन का जो टाइम होता था ना उसके अंदर उसने कहती थी कि मैंने सिर्फ ये वॉच करना है कि हम वेदर वी आर गोइंग टू गो बाय दीज रूल्स और नॉट. अच्छा इसकी रूल्स को फॉलो करने के लिए उसने अप्रिसिएशन रखी होती थी, और उसकी अप्रिसिएशन क्या होती थी, वो जैसे हमारी कैरम की गोटियाँ होती हैं ना उस तरह के, समटाइम्स वो आप समझ लीजिए वो रखी कि इसने अच्छा काम किया तो उसको उठा के एक वो आप कह लीजिए पॉइंट पकड़ा दिया या क्या वो दे दिया. और जो रिप्रिमेंड उसका क्या होता था, जिसको वो टाइम आउट कहा करती थी, वो भी उसने कोई रखा होता था, कोई माइल्ड सी कोई छोटी सी सजा रखी होती थी, 10 मिनट के लिए आउट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. और उसमें एक बात होती थी, लेकिन कहती थी कि एक मर्तबा जो बैड हैबिट का साइकिल तोड़ना पड़ता है. और मेरा ख्याल है ये जो छुरी निकालने वाला है ना ये उसी के अंदर आया होगा, क्योंकि एक वक्त आता है अच्छाई को मान तो बच्चे भी जाते हैं बड़े भी जाते हैं, लेकिन जब उसमें अमल की बारी आती है ना तो वो फिर वो शैतान जो होता है ना बैड हैबिट का वो सामने आके होता है पूरी ताकत के साथ. और देखिए ज़हन में रखिएगा हम इतनी देर से बुराई में इन्वॉल्व हैं, ईमान भी कमजोर है और विल पावर भी बहुत लो है, तो क्या होता है कि उस वक्त वो फिर ये ना रेजिस्टेंस का
गश ऑफ इमोशंस में
एग्जैक्टली इमोशंस रनिंग हाई और एकदम पूरी वॉलेटाइल जिसको हम बोलते हैं, तो वैसे वो वक्त होता है उसमें एक दफा फाइट भी करनी पड़ती है. ठीक है,
ये जो आपने मॉडल बताया आंटी, इसमें माँ का असर्टिव होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये चीज तभी हो सकती है ना कि जब उसकी टोन ऐसी है, कमांडिंग टोन इन अदर वर्ड्स असर्टिव. मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि ही वाज वेरी कंपैशनेट, वेरी सॉफ्ट, बट एट द सेम टाइम असर्टिव. यानी सहाबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नज़र हमें देख लेते थे ना, या गुजरते हुए कुछ बात कह देते थे, तो हमें पता था कि अब हमें ये करनी है.
आपके रोब की मसाफत जो है वो एक महीना के फासले पर थी, यानी आपका असर्टिव होने का लेवल यहाँ पर था. व्हेन ही सेड समथिंग ही मेंट इट.
बिल्कुल
ठीक है,
बिल्कुल. तो ये भी स्किल मेरे ख्याल सीखना चाहिए पेरेंट्स को, असर्टिव होने का. असर्टिव होने में और चीखने चिल्लाने में बड़ा फर्क है,
बहुत फर्क है.
और चीखने चिल्लाने से मेरे ख्याल मसले ज्यादा खराब होंगे, बच्चों का कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, जो इमरजेंसी का.
तो जो अपना कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हुआ है वो
सही बात है. आवे कावे बिगड़ा है, अल्लाह माफ करे. जो
इसके लिए बड़ी जबरदस्त किताब है, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमत करे, मुफ्ती निजामुद्दीन शामजई, मिसाली बाप.
अच्छा अच्छा,
बहुत कमाल की किताब है. मेरा
मिसाली
बाप,
बाप.
उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, मिसाली माँ, मिसाली बाप, मिसाली दुल्हा या मिसाली शौहर, मिसाली बीवी. और बहुत अच्छी तहकीक है. ये जो है बनोरी टाउन से इनका ताल्लुक था, फिर दुनिया से चले गए. फिर इनके दामाद हैं मौलाना मोहम्मद यूसुफ, मेरा ख्याल वो भी शायद दुनिया से चले गए.
अच्छा अच्छा.
तो बहरहाल वो किताब बड़ी कमाल की, और वो तरबियत औलाद पर है. इतनी अच्छी वो बात बताते थे, और उन्होंने उसके अंदर जो रिप्रिमेंड है और जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसको इतने अच्छे सिस्टम में रख के बताया. वो कहा करते थे, उनकी मैंने किताब से, मैंने मेरा थीसिस जो था ही पेरेंटिंग पर था, तो बहुत मैंने इस्तफादा किया. वो कहते थे कि जब सजा देनी हो ना बच्चों को, एक कॉन्सिक्वेंसेस का अपने सिस्टम सेट करना है.
राइट.
वो कहते थे सजा 3 नमाजों के से पहले नहीं देनी है.
अच्छा
ठीक है, अपना कॉर्टिसोल लेवल जो है ना उसको नीचे ले आइए.
ठीक है.
और वो कहते थे जो सजा बराए इस्लाह नहीं है ना, वो सजा नहीं है, वो तो फिर इक्वल मुकाबला है ना. उसी मुकाबले के अंदर तो छुरी निकली थी. आप दोबारा समझिए, आप उस लेवल तक आए थे तो उन्होंने छुरी निकाली थी. ठीक है, अगर आप बाप या आई एम सॉरी उन मदर के लिए, मैं उनके ऊपर बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूं,
लेकिन
हम समझ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि समहाउ जो है ना रिएक्शन दोनों तरफ से एक ही आ रहा था, इसीलिए एक्शन का रिएक्शन वही हो रहा था ना.
सही सही.
तो वो कहते थे कि 3 नमाजों से पहले सजा नहीं देनी, और फिर कहते थे जब सजा देनी है ना तो उनको बता के सजा देनी है कि मैंने आपको समझाया, मैंने आपको वार्निंग दी, आप उस पर फिर भी डटे रहे, अब आप सजा को डिजर्व करते हैं. जैसे वो अदालत में जो है ना जो जज है वो सजा सुनाता है, और उसके बाद फिर उनको सजा देनी. तो मुझे उनकी बात बड़ी यानी प्रैक्टिकल बुनियादों पर अच्छी लगी, और मैंने ज्यादातर फिर अपना तजिया किया, तो मैंने देखा हम ज्यादातर तो रिएक्टिव ही होते
हैं. बच्चा अगर मोबाइल फोन यूज कर रहा है तो थोड़ा अपना कोर्टिसोल लेवल नीचे ले, थोड़ा सा यूज करने दें, लेकिन एक चेक रख के उस पे जरा उसको समझा के या ना दें. What do you think on this?
इस वक्त स्क्रीन एडिक्शन हमारा सबसे बड़ा मसला है
जी.
अब हम सबको नजर आ रहा है जो बच्चों के पूरी तरह दिमाग माउफ हुए पड़े. अच्छा, स्क्रीन एडिक्शन का हमारे पास हल कुछ नहीं है. आप देख लीजिए कोविड आया, अब क्या करते.
सही.
हम बड़े उसका इतनी बुरी तरह से शिकार है. मेरा अपना जो काम है उसका 80-90% उसके ऊपर है. अब उसके अंदर बच्चा, मैं कहती हूँ मैं अपने काम को सीरियस ले रही हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ तुम्हारे लिए रोटी कमा रही हूँ, बच्चा भी तो अपनी तरफ से सीरियस काम कर रहा था ना, उसका खेल तो उसका सीरियस है ना. अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताऊं, हमें नौमान अली खान कहते थे कि अगर बच्चों को कार्टून से रोक नहीं ना सकते तो उनके साथ बैठ के कार्टून देखना शुरू कर दो. हमें यहाँ पर ना जो अपने एवेन्यूज है ना उनको चेंज करना पड़ेगा. हम इससे छुड़ा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके नुकसानात से कैसे दूर रह के इसकी बेहतरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं. मुझे याद है मेरी एक इंडियन फ्रेंड थी, तो अभी कुछ देर पहले स्टीव हार्वी के प्रोग्राम में एक बच्चे का उसने इंटरव्यू लिया ना, तो वो बच्चा कहने लगा कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, हमारे पास, हम इंटरनेट का बिल पे नहीं कर सकता था, तो फिर मैंने अपने लिए ये जो गेम है ना ये इन्वेंट की थी. अच्छा, उसने प्रोग्राम किया अपना, और बच्चा 6-7 साल का था, कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ा था. अच्छा, इसी तरह मेरी वो इंडियन फ्रेंड थी, तो वो मुझे बताने लगी, कहती है लगा तो उसका भी बच्चा हर वक्त रहता था, लेकिन मुझे बताने लगी कि ये सॉफ्टवेयर्स का इसको बड़ा वो है, ये फ्लां काम कर लेता है, ये फ्लां काम कर लेता है, ये नहीं. और मुझे याद है कि फिर मुझे उसकी बात से बड़ा असर हुआ. तो मेरा छोटा बेटा था, मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, किताब पढ़नी है ना, बच्चे किताब तो पढ़ते नहीं है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं हमारे पास, हमारे पास वो जो स्पीकिंग बुक्स हैं हमारे पास, मैं ये कम से कम अच्छी मूवीज़ हैं. वो एक मूवी बड़ी उस जमाने में मुझे अच्छी लगी थी, क्योर, मैं चाह रही थी मेरा बेटा देखता, था मेरे बेटे को, इतनी बोर लग रही थी, वो देखने ही नहीं चाहता था. मैंने बकायदा, जैसे आप ट्यूशंस पे भेजते हैं ना, मैंने किसी अपनी जानने वाली के पास बेटे को ट्यूशन भेजा, साथ इतने पैसे डॉलर उसको दिए और साथ ही को कहा सिर को बिठा के वो मूवी दिखानी, क्योंकि बच्चे नहीं देखना चाहते थे ना. तो बात यह कि हमें इसके अंदर जो है ना वो इसकी शक्लें बदलनी पड़ेंगी. इससे नियर फ्यूचर में मुझे तो नहीं लग रहा हम बच पाएंगे जो रियलिटी के लेवल पर है. और आप देखिए जो जिन लोगों ने इस पर अच्छा काम कर रहे हैं वो काम भी तो कितना कर रहे हैं. अब हमारा हम लोग जो यूथ क्लब वाले हैं, आप देखिए हमारा काम की कितनी डिपेंडेंसी है हमारी जो है ऑनलाइन जो ऑडियंस है उसके साथ. तो ये हमें इसके लिए जो है ना अगेन ज्यादातर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी. उसके साथ ये भी दुरुस्त है, आप जैसे कह रहे हैं एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, वो सब हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी.
वेरी नाइस, वेरी नाइस. यानी एक इस चीज को मैं कहूँगा को प्ले, ये टर्म यूज होती है कि यू शुड प्ले विद योर चिल्ड्रन एंड दैट्स कॉल्ड को प्ले. यू शुड नो विच गेम्स आर गुड. यानी जैसे आई थिंक पिक्शनरी है एक गेम, वो उसका एक वो डिजिटल वर्जन भी आया, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. वो क्या होता है कि वर्चुअल आपके पास वो एक पेन होता है, वर्चुअली कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो बच्चा गेस करता है कि ये क्या है, समथिंग लाइक दैट. वो मुझे अभी एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, बट पॉइंट इज़ के पेरेंट्स शुड नो कि कौन सी एप्स, गेम्स या डिजिटल वर्ल्ड पे क्या ऐसा प्रोडक्टिव है कि बच्चों को मैं खुद भी दिखाऊँ, देखूं भी, उनके साथ बैठूं, थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा वगैरह वगैरह. और अल्टीमेटली आंटी ये बात तो मैंने, मतलब मेरा क्रक्स यही है एंड आई एम श्योर आपका भी, कि जिन बच्चों को तवज्जो नहीं मिली ना घर में, वो फिर ज़्यादा रेबेलियस और ज़्यादा, मतलब ख़राबी ज़्यादा मैंने ना उन बच्चों में देखी जिनको घर से जो है ना वो प्यार नहीं मिला या तवज्जो नहीं मिली है. तो फिर ज़ाहिर है कि वो फिर बाहर से, जैसे वो राजा ज़ियाँ भी बड़ी मज़े की एग्जांपल देते हैं कि अगर ज़ाहिर है आपकी बेटी उसकी तारीफ आप नहीं कर रहे, तो फिर वो बाहर के किसी जवेद से तारीफ करा
exactly,
वो खुश हो. दैट्स द इशू आई बिलीव.
अच्छा उसमें ये बात है कि एज अ टीचर मैंने ये किया कि मैं जब पढ़ाती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी या इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाती थी, तो कोविड के दिनों में, वैसे मैं कोविड से पहले भी जो है ना ऑनलाइन काम बहुत दिया करती थी बच्चों को, बिकॉज आई स्टार्टेड कनेक्टिंग माई सेल्फ विद देम. तो कोविड के अंदर तो ये चीज़ और ज़्यादा होगी, हम में से हर जो हमें जिनको नहीं भी आता था हम लोगों को सीखना पड़ा. मैं अमूमन डिजिटल कॉमिक बनाने के असाइनमेंट दिया करती थी, अमूमन मैं नई नई ऐप्स ढूंढ के ले आती थी कि पकड़ें इसके ऊपर जो है ना वो कुछ करके लाए, प्रोजेक्ट्स उसके दे देती थी, रिसर्चेस दे दिया करती थी. अच्छा फिर हद तक क्या हुआ कि इस्लामियात में तो मैं ये भी करती थी कि मैं उनको ये जो आपके होते नहीं है छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियोज़ जो है ना उनकी वो प्रोजेक्ट दे दिया करती थी कि अब आपने वीडियो बना के लेके आनी है, आपने ये सर्वे करके लेके आना है, लेकिन उसको आपने रिकॉर्डिंग करके लाना है. लाइक हमें थोड़े से अपने ना फिर अब अंदाज को बदलना पड़ेगा. कॉपी पेंसिल के साथ बैठ के लिखो 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 वाला काम नहीं चलेगा. और फिर हमें उनकी बात भी करनी पड़ेगी जिन लोगों के साथ ये अपने आप को कनेक्ट करते हैं. ये लोग जो है किन को देखना पसंद करते हैं, ये एनिमेज को वॉच करना पसंद करते हैं. नास डेली जो है हर बंदे को पता है, स्टीव हार्वी जो है सबका पॉपुलर है, हमें वो एलन शो जो है वो हमारे जो टीनेजर्स हैं उनके लिए बहुत. तो ये सारी चीज़ें के साथ ना जो हमें उनको थोड़ा सा वो वाला हमें देना पड़ेगा. और हमें दूसरी बात है हमें आदत डालनी पड़ेगी बजाय वर्डिक्ट देने की क्वेश्चन रेस करने की. हम वर्डिक्ट देते हैं ना, हमारा बच्चा जो इंडिविजुअल का इज्म का जो बड़ा शिकार है वो तो खुद अपने आप को फन्ने खां समझता है. और उसका सबसे बड़ी मसला ही होता है अम्मी को क्या पता, अब्बू को क्या पता.
बिल्कुल, बिल्कुल.
तो अगर उसको हमने वर्डिक्ट देने की कोशिश की ना तो वो शायद मुंह से तो चुप कर जाएगा, वो करेगा ही नहीं. लेकिन ये कि अगर हमने क्वेश्चन रेस करना शुरू कर दी है ना और उस क्वेश्चन के बाद रिसर्च की जिम्मेदारी संभव उन पर डाल दी तो फिर हमें भी करना पड़ेगा. और फिर अब मैं आपकी दूसरी बात के पार्ट की तरफ आती हूँ जो आपने ज़ियाउल हक की रेफरेंस से की, कि बात यह है कि घर में क्वालिटी टाइम, हमें एक डिसिप्लिन जो है बनाना पड़ेगा घर के अंदर, जिसके अंदर बातें होती है. फादर मान तो जाते हैं इस बात को, मैं समझती हूँ मदर्स का रोल बहुत ज़्यादा, बेचारी मदर्स ही हमें खपती नज़र आती हैं. लेकिन जब फादर मान जाते हैं ना, अच्छा एक जो है ना वो जो ऑनलाइन टाइम नहीं होगा घर में, जो भी हम लोग कोशिश करते हैं 2 घंटे 4 घंटे असर से मगरिब, मगरिब से ईशा, जो भी है. अच्छा उसमें यह कि फादर थोड़ी देर के लिए तो मान जाते हैं, फिर वहाँ पर बैठ के सोफे पर बैठ मुँह लटका के बैठ जाते हैं, मैं क्या करूँ भाई, क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं इंपेशेंटली, टाइम गुजरे तो मैं वहां पे जाके उसको पकड़ूं. तो देखें बच्चों को ये नजर आता है, ठीक है. तो ये चीज अगर बजाय ऐसे में होता, ये माओं की तरफ से ये चीज आती है तो फादर जो है ना इसको सीरियस नहीं लेते, हालांकि जिम्मेदारी है फादर्स की है. और मैंने देखा है, मैं 10 थप्पड़ लगा के वो काम करवाती थी जो मेरे मियाँ एक नज़र के साथ करवा देते हैं. ये अल्लाह का कानून है. मर्दों को जो अल्लाह ने ज़्यादा ताकत दी है, जिस्मानी ताकत, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है. और ये ताकत जो है ना, खास तौर पे लड़के इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं. दे नो वेरी वेल कि हाउ टू स्टे मेरी अपनी औकात में, मैंने कैसे रहना है. और बिलीव कीजिए कि मैं मार मार के, चीख चीख के, धाड़ धाड़ के, थक के बहुत थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी लेती थी. मेरे हस्बैंड तो पता नहीं कैसे, इट हैपेंड सो नेचुरली. अगेन ये बात है कि फादर्स को वापस आना पड़ेगा. और मैं खास तौर पे कहा करती हूँ लड़कों की जिंदगी में, लड़कियां फिर हो जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं घर के सिस्टम के अंदर. वो लड़के जो हैं, मैं अमूमन मुगीरा की मिसाल दिया करती हूँ. आई रिमेम्बर विविडली 7 years के थे तो आई न्यू अब मैं कुछ नहीं कर सकती. हालांकि मैं बहुत एक अच्छी एक्सप्रेसिव मदर हूँ और मेरा बड़ा अच्छा भला होल्ड है घर पर. मेरे जैसी औरत को मुझे समझ आ गई थी कि मैं बेबस हूँ. तो और फिर मैं आपको बताऊँ, औलाद इतनी कीमती चीज होती है कि फिर जब फादर्स हाथ नहीं ना डालते इस मुश्किल प्रोजेक्ट में, चैलेंज में, तो माँ के दिल को तकलीफ भी बहुत होती है कि इस चैलेंज में तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया. ये टीनएजर्स के निबटने वाले चैलेंज में. और उसके साथ मैंने देखा फादर्स को ज्यादा वो किया जाए, तो खैर से एक ये भी हमारे फादर्स ने बहुत वो कर रखा है, माजरत के साथ तमाम मर्दों से, जनाब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और मरीज बन जाते हैं. सच अ गुड एस्केप.
मेरी तो जिंदगी जहन्नम बन गई,
मेरी तो जिंदगी जहन्नम में बन गई, औलाद ही ऐसी हो गई. स्टॉप इट. नाराज हो जाना, क्विट कर जाना सबसे आसान है. क्विटिंग इज नॉट द ऑप्शन.
आपको ये सूट ही नहीं करता रवैया. अल्लाह ने कब हम आपको बनाया, तो कम
मैंने बताया ना, वो जो बच्ची मुझे कहने लगी फादर जनाब वो तो शुगर के मरीज हो गए हैं जी, एक नौजवान एक जवान आदमी वो हार गया है, तो वो क्या माँ से तवक्को कर रहा है कि वो जीतेगी इससे, इस जो था ताकत के पहाड़ के साथ वो निपटेगी.
और ये मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आपने बात की ना कि स्पेशली लड़कों की तरबियत, लड़कों का इतना क्रिटिकल रोल है ना फैमिली में, बीइंग अ सिबलिंग. मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अपनी वाइफ ने मुझे कई बार ये जिक्र किया कि उनके भाई का जो उनकी लाइफ में फिनोमिनल रोल रहा है ना, फिनोमिनल एट एवरी स्टेप, मतलब कंधा भी दिया, सिखाया भी, चीज़ें भी सिखाई और प्रोटेक्ट भी किया, और इस तरह से प्रोटेक्ट किया कि मतलब सिंसेरिटी के साथ नज़र आ रहा था. और माशाल्लाह शी इज़ ऑल प्रेज फॉर हिम. तो मैं सोच रहा था कि वाकई भाई अगर जो है ना वो तगड़ा है, उसकी मतलब जो सबसे बड़ा भाई है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि वो शायद ज़्यादा कनेक्ट कर सके अपने सिबलिंग्स. माँ शायद ना इतना कर सके, जो बड़ा है वो ज्यादा कनेक्ट कर सकेगा.
बिल्कुल ऐसी बात.
तो जब आपने उस पर वर्किंग नहीं की तो वो भी इंडिविजुअलिज्म का शिकार होकर वो कहेगा मेरा क्या, बल्कि वो लड़ाइयाँ होंगी आपस में सबकी. तो ये भी बड़ा एक इशू जो है ना वो आता है.
हम अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं, इस बात की तरफ दोबारा आए, ये पैम्पर करते हैं कि इन दी नेम, हमारा दिल चाहता है हम इनको वो चीज़ लेते हैं कि पूरे अपने अपने क्लास फेलोज में इनके पास वो चीज़ें, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. आपको पता है हम उनको 3 बड़े बड़े नुकसान पहुंचाते हैं, और मैंने इस पर एक वीडियो भी की थी. उनमें नुकसान में ये कि हम उनको सारी जिंदगी के लिए क्रिपल कर देते हैं, वो कभी वो वाला कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं कर पाते जिसके साथ वो अपनी अचीवमेंट समझे.
बिल्कुल,
जितनी भी उनकी अचीवमेंट होती है उनको पता है कि सारी मेरी माँ ने या मेरे बाप ने स्टेज करके दी हुई है. दे नेवर आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स. फिर क्या बात है कि दे स्टॉप कनेक्टिंग देमसेल्व्स उन दूसरे लोगों के साथ. ठीक है, और तीसरी बात यह है कि उनकी सारी जिंदगी की जो ये रिलायंस हो जाती है ना कि मुझे कुछ करने के लिए कोई और सिस्टम बना के देगा, ये इतनी बड़ी जो है हम माँ बाप अपने बच्चों के साथ हाथ कर जाते हैं कि ये ज्यादती है. मैं इंशाल्लाह ये वीडियो शेयर करूंगी और इसका लिंक मेरा ख्याल है हम इसके अंदर वो डालेंगे अपनी उस पर डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमें समझना पड़ेगा कि हम नाम मोहब्बत का ले रहे हैं लेकिन हम बेसिकली अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हैं. मोहब्बत करना सबसे आसान काम है, इसी तरह नाराज होना सबसे आसान काम है. तो कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा ना.
एब्सोल्युटली.
और फिर वो जो आर्टिफिशियल होपलेसनेस है,
ये मेरे सामने कुछ एक आर्टिकल है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग की कुछ टिप्स हैं 21st सेंचुरी. इसको क्विकली मैं गो थ्रू करना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्स हैं.
अच्छा.
पहली है जी कि कैच योर किड्स बीइंग गुड, यानी उनको अच्छा करते देखो और फिर उसको सराहो, उसको अप्रिशिएट करो. आई थिंक ये तो सुन्ना से बहुत ज़्यादा प्रूवन है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से, जिस तरह वो नाम ले लेके बच्चों को अप्रिशिएट करते थे और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने डील किया अपने भी नवासों से. फिर है जी के फाइंड टाइम फॉर योर किड्स, वो आपने माशाल्लाह उस पर काफ़ी रोशनी डाली है. डोंट शो योर एंगर इन फ्रंट ऑफ किड्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आंटी, बिकॉज आई थिंक कि बच्चा बड़ा कुछ नोट कर रहा होता है. अगर मैं ये समझता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं ना बच्चे के सामने, तो फिर मेरा ख्याल थोड़ा सा हम अपना स्टेटस भी लूज कर देते हैं बच्चे के साथ. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन.
हम जब जादू की और उसकी जिन्नात की बात करते हैं, तो आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा खुशी की हालत में और बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में जो है ना जिन्नात वगैरह एंटर हो जाते हैं बॉडी में. वजह पता है क्या है? हम अपने आप को बहुत कमज़ोर कर देते हैं. तो यहाँ पे बिल्कुल ये वाली आपकी बात दुरुस्त है. जब हम अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं ना, बच्चे को पता चल जाता है
बिल्कुल
ये कमज़ोर है.
फिर है जी कि मेक कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन अ प्रायोरिटी. वही आपके वाली बात है, यू हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू यू नो, अगर वो आर्ग्यू कर रहे हैं तो उनको आपने सिखाना है कि बेटा आर्ग्यू इन द राइट वे कैसे किया जाता है. जैसे वो तीन जो है ना एजुकेशन के स्टेप्स हैं कि सबसे पहले जो है इमिटेशन, चिल्ड्रन लर्न थ्रू इमिटेशन. नंबर टू सेल्फ रीजनिंग सिखाते हैं आप उन्हें कि वो रीजन करना सीखें कि चीज़ें वाई दे आर लाइक द वे दे आर, क्या बुराई है. मतलब इस्लामी अहकामात की अगर हम बात कर लें, अगर हम उन्हें डिसिप्लिन करेंगे विदाउट पर्पस, विदाउट टेलिंग देम कि ये क्यों है, तो आई थिंक कि वो शायद वो उसको उस तरह एब्जॉर्ब ना कर पाए. और तीसरी चीज़ जो होती है ना, वो होता है कि फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस. अब बच्चा जो है ना इस लेवल पे आ गया, तो हमारे यहाँ तो ये उलट है. फॉर्मल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आती हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है ना. सारी हम गाइडलाइंस डिफाइन कर देते हैं. सेल्फ रीजनिंग पे जब बच्चा आता है, हम उसका वो कॉन्फिडेंस शैटर कर देते हैं, हम उससे रीजन ही नहीं करते. डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं. आई डोंट ब्लेम द पेरेंट्स. पेरेंट्स बेचारे ज़रा आपको पता है कि वो एक और बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने अपने दौर में ऐसी चीज़ें नहीं देखी होती. उनके लिए शॉकिंग चीज़ें होती हैं कि मेरे बच्चे ने पूछ कैसे लिया, यानी मेरा बच्चा कहीं मुलहित तो नहीं हो रहा, या मेरा बच्चा टोटली कहीं आउट तो नहीं हो रहा वगैरह वगैरह. तो बेचारे हो जाते हैं पैनिक, नेचुरल है, फितरी है. यहीं पे मैं कहना चाहूँगा कि दे मस्ट अंडरस्टैंड, हमारा सारा क्रक्स ये था आपका भी, कि बच्चों पे जो प्रेशर इस वक्त आया हुआ है और जो पर्सनैलिटीज़ में चेंज आ चुकी हैं उनकी, उसको सामने रखते हुए पेशेंट रहें. इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है वो, दुआ करें कहीं ना कहीं से वो आंसर पा जाएगा. काउंसलिंग की ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप उससे कम्युनिकेट करें, आप कनेक्ट करें उससे.
अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, आपने कहा कि अगर फादर से नहीं ये हो पा रहा तो बड़े भाई भी तो जिम्मेदार है ना.
जी.
अच्छा, अब ये है कि मैंने ये बात देखी है कि आप मैं क्या करती हूँ कि बड़े बच्चों के साथ ना, जब छोटे बच्चों की बुराई करें ना, तो बहुत दे फील सो मच लाइक यू नो कि भाई हम तो इलेटेड कि भाई हम इस लेवल पर है कि हम दूसरों की गलतियों को फाइंड कर सकें. लेकिन इन ऑर्डर टू डू दैट दे स्टार्ट लुकिंग इन टू देमसेल्व्स एज़ वेल कि ये मैं भी करता हूँ. तो मैं अमूमन क्या होता है, नमाज के लिए कहते हैं, मैं छोटे भाई को कहती हूँ जाओ ना जरा बड़े भाई के साथ चले जाओ, देखो तुम्हारी वजह से वो नमाज़ पढ़ लेगा. और बड़े भाई को कहती हूँ अरे तुम नहीं उठे ना तो उसकी छोटे की भी नमाज रह जाएगी. तो मेरा ये ख्याल है कि हम ये छोटे छोटे काउंसलिंग के प्रोजेक्ट दे हैं. मसलन भाई को, बड़े भाई को कहा कि देखो भाई ये अब छोटा भाई है, इसको तुम ही समझा सकते हो मैन टू मैन लेवल पे, तो गो एंड सिट विद हिम.
इसमें ना आंटी एक ट्रू स्टोरी भी है. वर्ल्ड वॉर टू के एक प्रिजनर थे इटालियन, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, उन्होंने ओलंपिक्स में भी कुछ गोल्ड मेडल्स लिए. ही वाज अ ग्रेट स्प्रिंट रनर.
अच्छा.
उनकी स्टोरी ये है कि बचपन में ही गॉट इनटू अल्कोहल एंड ड्रग्स, और इनके फैमिली इटली से माइग्रेट करके अमेरिका आई थी फॉर अपॉर्चुनिटीज वगैरह वगैरह. उसकी लाइफ में उसके बड़े भाई का कमाल का रोल था. यानी ही सेड कि लिटरली माय ब्रदर सेव मी फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन. उसका भाई ना क्या करता था उसे कि उसने देख लिया कि ये अच्छा भागता है, यानी उसका एक स्किल ढूंढ लिया. उसने देखा कि जब भी पुलिस इसे पकड़ने आती है, वो सिगरेट लगा रहा होता है, शराब पी रहा होता है, इसने ये भागता बड़ी तेजी से. उसने कहा चलो डेली मेरे साथ ना रनिंग पे चलो. वो क्या करता था, खुद साइकिल चलाता था, इसे कहता था मेरे साथ रेस लगाओ. वो करते करते बच्चे को अपना टैलेंट नजर आया. ही वेंट ऑन टू बिकम, कॉलेज में जाके वो स्प्रिंट रनर बना और वेंट ऑन टू बिकम द ओलंपिक विनर स्प्रिंट रनिंग में अमेरिका में.
अभी आपने जो कहा ना कि कैच देम डूइंग समथिंग गुड.
जी 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 जी. तो उसने, बड़े भाई ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि वो आर्मी में गया. उसके बाद वो काफ़ी बड़े रैंक पे गया. फिर ही गॉट कॉट इन फ्रॉम विद द जापानीज आर्मी. जापानीज आर्मी ने बहुत टॉर्चर किया उसे. ये ट्रू स्टोरी है. मुझे उसका नाम जहन से निकल गया, बहरहाल लोग खुद सर्च कर लेंगे. तो एट द एंड उसे वो सारी चीज़ें जो उसके भाई के लेसन्स थे उसके दिमाग में आते थे. यानी भाई वाज द मेन कैरेक्टर जिसने कहा था नेवर गिव अप और तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, रियलाइज़ हु यू आर. दैट एक्चुअली सस्टेन्ड हिम इन दैट डिफिकल्ट एनवायरनमेंट, वो जो वहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ होता है. एंड ही केम बैक जब वो सुलह हुई आपस में वर्ल्ड वॉर टू के बाद, तो एक पैक्ट हुआ जाहिर है, फिर प्रिजनर्स रिटर्न किए जापान ने. ही केम बैक एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, यानी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पता नहीं क्या क्या होता है लोगों को, लेकिन उसकी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हुई, वापस आ गए, उसने शादी भी की, सब कुछ किया. बट वन क्रिटिकल कैरेक्टर इन दिस होल स्टोरी इज द एल्डर ब्रदर, एल्डर
सिस्टर. फैमिली की मेरा ख्याल है बात ही यही होती है. मैंने अमूमन देखा है जहाँ पे पेरेंट्स क्राइसिस का शिकार होते हैं ना, वहाँ पे बहन भाई एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्ट करते हैं. छोटी उम्र की जो है बड़ी बहनें माएँ बन जाती हैं, और छोटी उम्र के जो बड़े भाई हैं वो इसी तरह से पैटर्न्स बन जाते हैं. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं.
सो कितना इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वेल कनेक्टेड रखें आपस में, और जब बच्चे लड़ें तो उनमें प्यार मोहब्बत पैदा करें. तो छोटी छोटी लड़ाइयों को ना पेरेंट्स नॉन सीरियस लेते हैं, वो नॉन सीरियस लेने वाली चीज़ें नहीं हैं. वही चीज़ें मैं समझता हूँ आगे जाके फिर वो मुकाबलाबाजी और वो राइवलरी, वो सारी चीज़ें ये इख्तियार कर जाती. एक आखिरी
बात मैं भी करना चाहूँगी, दुआ.
एब्सोल्युटली,
अल्लाह ताला, आज ही वो एक आयत सामने आई कि किसी ममा काना लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह. किसी कोई इंसान ईमान नहीं ला सकता, तू अपनी मर्जी से किसी को मोमिन नहीं बना सकता.
सही.
तो ये सीधे रास्ते पर लाना भी तो किसी के इख्तियार में नहीं है.
एब्सोल्युटली. और ये इसमें मैं एक और बात ऐड कर दूँ कि माशाल्लाह मैंने पढ़ा था कि वो जो वाकया खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम वाला, उसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो दीवार तामीर कर दी थी, वो जो एक दीवार गिर रही थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया. फिर उन्होंने रीज़न बताई कि जी ये यतीम बच्चों का माल है, इसके नीचे तो अगर गिर जाती वो एक्सपोज हो जाता है, तो लिहाजा मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं यहाँ दीवार तामीर करूँ, बिकॉज वकाना अबू हुमा सौलिहा, इनका बाप नेक था. तो स्कॉलर यहाँ से एक पॉइंट बताते हैं कि जिसके माँ बाप नेक है ना, अल्लाह उनके जाने के बाद भी उन बच्चों की हिफाजत का जिम्मा ले. और आज के दौर में तो आंटी हम नज़र रख ही नहीं सकते, कितनी रखेंगे. यू नेवर नो, आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ उसने जाना है. तो आई थिंक कि ये जो आपने बात की ना कि दुआ और पेरेंट्स का अपना नेक होना, अपना तकवा इख्तियार करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपने बात की कि मेक योर एक्सपेक्टेशंस क्लियर. आपने कहा कि एक डिसिप्लिन का माहौल होना चाहिए, एंड एक्चुअली चिल्ड्रन एक्चुअली लव दैट. वो रिजिस्ट करते हैं लेकिन असल में दे नीड दैट. और यहाँ पे मुझे एक सेंटेंस आंटी याद आ गया, मैंने पढ़ा था कि दो तरह के तरीके हैं पेरेंटिंग के. एक ये है कि आपके बच्चे की आपने जिम्मेदारी लगाई कि उसने कमरा साफ करना अपना. अब आप जब आए चेक करने के लिए उसने नहीं किया, तो एक तरीका ये कि आप उसे कहेंगे दैट्स इट, यू आर ग्राउंडेड. दूसरा तरीका ये है कि आप आए, आप देखें उसने कमरा साफ नहीं किया, और आप उसे कहें कि ओके क्लीन इट एंड देन वील गो आउटसाइड, हम डिनर के लिए जाएंगे. तो दूसरे में रीइन्फोर्समेंट है और रिवॉर्ड का एक वो है एलिमेंट, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट है बिल्कुल, और रिवॉर्ड का एक एलिमेंट है. तो इन दोनों में बड़ा फर्क है आई बिलीव के.
अच्छा मैं आपको बताऊं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग एक साइंस है. बिहेवियर चूंकि फॉर्म किए जाते हैं ना, ठीक है, इसीलिए बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हार्ड सेट है.
सही है.
मैं आजकल, मुगीरा का बेटा है 3 साल का, तकरीबन 2.5 साल का है, 3 साल का. अच्छा जी, वो उसको आजकल स्कूल में ले जाना जो है ना, वो अच्छा मैं देख रही हूँ तकरीबन 2 हफ्ते से हमारे घर में चल रही है कि उसको स्कूल में ले जाना है. वो क्या करता है, शुरू में तो वो बहुत ही चीखता चिल्लाता था, ठीक है जी, और उसके बाद आहिस्ता से मैंने देखा कि चीखने चिल्लाने का ड्यूरेशन कम होता जा रहा है. फिर बीच में मैंने देखा कि वो सिसकियां लेता हुआ या मुंह बना के चला तो जाता था लेकिन रोना खत्म हो गया. और कल और आज से मैं देख रही हूँ कि ही हैज एक्सेप्टेड इट. तो ये रूटीन सेट करना, इसको हम कहते हैं रूटीन सेट करना. मैं आपको बताऊँ, हम इंसान रूटीन के इतने एडिक्टेड होते हैं कि बहुत सारे अच्छे काम हम रूटीन के चक्कर में कर जाते हैं ना. तो ये अगेन ये डिसिप्लिन या एक सिस्टम बनाने का पार्ट है, अच्छी रूटीन सेट करना.
अच्छा नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा चाहिए, एनकरेजमेंट चाहिए, वो बन जाएगा उस डिसिप्लिन का.
आपने नमाज के वक्त पे अजान लगा के एक दफा जमात का ये जो भी माहौल बना लिया, एक दिन रेजिस्ट किया, थोड़ा आपने पकड़ा, अगले दिन उससे कम आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, उससे अगले दिन, लेकिन अगेन पेशेंस इज रिक्वायर्ड. ये पहले दिन ही है ना, मैंने इतना कुछ किया और तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो उठा के थप्पड़ लगाया जाए या फौरन वो ग्राउंडेड वाली अपने बात की, इसके बजाय लग के ओहो अच्छा अब बेटा आप सो रहे हैं ना, कल सुबह की हमने नमाज ना अच्छी पढ़नी है, मैं आपको उठाऊंगी और यहाँ से जस्ट उसकी हेल्प करें और फिर हम नमाज पढ़ने करने के बाद ये करेंगे वगैरह, तो आहिस्ता आहिस्ता करते एक दफा जब लाइन पर डाल देंगे ना, मैं आपको बताऊं फिर बच्चों की फितरत बड़ों से ज्यादा नेकी की तरफ है, बच्चे जल्दी इस तरफ हो जाते हैं. लेकिन हमें ग्रेजुअल, और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रेजुअल जो है ना उसकी तरफ वो हमें करना पड़ेगा. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है ना, ये जो हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है, इसको हमें लास्टिंग जो है ना चेंज की तरफ आना पड़ेगा. और मैं बताऊँ ये भी सुन लीजिए, कई दफा चेंज आ जाता है
जी,
दो हफ्तों बाद फिर पीछे चला जाता है, फिर दोबारा से असर नो एफर्ट करनी पड़ती है. पेरेंट्स की जॉब या मेंटोर की जॉब कभी ख़त्म नहीं होती.
आखिरी बस एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आंटी, बहुत हमसे क्वेश्चन होता है कि बच्चों में दीन की मोहब्बत कैसे इंस्टॉल करें, उन्हें दीन की तरफ कैसे लाएं, क्या माहौल चेंज करने की ज़रूरत है, फोर्सफुली लाएं, क्या करें कि बच्चे इंस्पायर हो जाएं दीन की तरफ.
सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे तो जीन्स बहुत काम करते हैं. जिस बाप का इंटरेस्ट हिस्ट्री में होता है ना, ठीक है, तो वो बच्चे हिस्ट्री लवर्स होते हैं, ठीक है. अमूमन डॉक्टर बच्चों के बापों के बेटे डॉक्टर बन जाते हैं,
गुड रीडर्स भी होते हैं.
हाफिज लोगों के घरों में हाफिज बच्चे बड़ी आसानी से हो जाते हैं. इसका मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी फाउंडेशन मौजूद है, अब हमने इसको पॉलिश करना है, ठीक है ना. तो बात यह कि दीन की तरफ आपका शौक है. एक होता है लेक्चरिंग, आज का बच्चा लेक्चरिंग नहीं लेगा, पहले भी नहीं लेता था, कोई इंसान लेक्चरिंग नहीं लेता, ये एक फितरत है. लेकिन पहले का बच्चा कम से कम इतनी रेजिस्टेंस शो नहीं करता था, आज का बच्चा तो रेजिस्टेंस भी शो करता है ना कि आप कैसे कह सकते हैं, ठीक है. तो लेक्चरिंग को अवॉइड करके माहौल तैयार करना पड़ेगा, और माहौल तैयार करने के साथ जो है बॉडी लैंग्वेज. हमें पता है ना सिवर वर्ड्स का जो असर है वो सिर्फ 7% है, 93% जो है ना वो हमारा सारा एनवायरनमेंट, सारा पूरा जो हमारा जिस्म वो उसको वो करता है. इसको करना पड़ेगा और कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी. आपको मैं बताऊं, बच्चों को जितने आजकल का दौर का बच्चा जो है चैलेंज का शिकार है ना, उसमें दो खूबियां भी ज़्यादा हैं. ये बच्चा ज़्यादा बड़ा रिसेप्टिव है कंपेयरिंग टू पास्ट. मुझे अपना पता है, हम लोग बहुत डम हुआ करते थे अपने जमाने में. दूसरी बात है कि इस बच्चे के साथ अगर किसी तरह आप रैशनल लेवल पे टॉक कर सको ना इसके अंदाज में, तो ये बच्चा चेंज भी लेता, ये एक्सेप्ट भी करता है. लेकिन उसके लिए आपको एक दफ़ा इक्वल लेवल पे आना पड़ेगा. पेरेंट्स के लिए तो यही सबसे बड़ी हर्डल होती है कि मैं यहाँ तक आ जाऊँ कि आई हैव टू कन्विंस हिम, और आई हैव टू बी लाइक यू नो इन अ सिचुएशन के वेयर आई से समथिंग एंड ही काउंटर्स मी बैक. देखें, इसको हमें समझना पड़ेगा, ये हमारा एसेट है, एंड वी आर डीलिंग विद ह्यूमन ओवर हियर, वी आर नॉट डीलिंग विद रोबोट्स के साथ हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो ये हमें भी सीखना पड़ेगा. मेरे पास बहुत सारा केसेस यही वाले आते हैं, बेटियां जो हैं वो शादी करना चाहती हैं, नज़र आ रहा है माँ बाप को ये गलत जगह है, यहाँ पे नहीं करना. और मैंने देखा यहाँ पे अगेन थोड़ी सी बापों की तरफ से मैं फिर शिकायत करूँगी, वहाँ पे मुझे सेंसिबिलिटी की कमी आती है. बापों को सबसे आसान लगता है रिएक्शन में आना,
सही
जी, अब ये अना का मसला हो गया, इसने फलां से शादी करने का सोचा तो सोचा क्यों, ठहर जाओ तुम एक मिनट, ठीक है. और मैं एक ही बात कहती होती हूँ, मैं कहती हूँ जिस बच्चे के साथ, बेटी के साथ या बेटे के साथ आप रिएक्शन लगाने लगे हैं ना, उसकी ताकत आपसे बहुत ज्यादा है. और हम सबको नजर आ रहा है वो गलत डिसीजन कर रहा है, लेकिन आपको पता है इस गलत डिसीजन तो उसने कर ही जाना है. ये हमारे सामने पीछे केस आया दुआ जहरा का और ये सब, और आपने देखा बच्चों की ताकत कहाँ तक जाती है, और वो जो जवानी का जोश है वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं. और मैं कहती होती प्लीज स्टे विद हिम, प्लीज स्टे विद हर, इवन हर द कॉन्सिक्वेंसेस तो उसको दिनों में नजर आ जाएंगे ना. She needs you.
Absolutely.
So be there. Excellent. Be there. Excellent. That's what parents are for.
ये जो आपने एक जुमला कहा ना, it sums it all up, कि they are human beings. They are not robots. Or they are not even your property, I believe. उनको property समझना, I think कि they are free individuals. Obviously, they are your kids. They should be following your rules. You have the choice to teach them what you want. बट इस्लामिक गाइडलाइंस को सामने रखते हुए चलें तो मेरा ख्याल इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी.
13 साल का जो बच्चा है उसको अल्लाह ताला एकदम इंडिविजुअल करार दे देते हैं,
जी,
वो फॉरेन पेरेंट्स के उससे निकल जाता है.
बिल्कुल सही. बिल्कुल
तो बात ये है कि हम समझते हैं कि रीजनिंग करने के साथ मेरी इज्जत कम हो जाएगी. माँ तो समझती है और बाप सबसे ज्यादा इस बचपने का शिकार होते हैं. दोबारा देखना पड़ेगा.
अल्लाह ताला आसानी फरमाए. बहुत चैलेंजेस हैं. तो बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह आपने जो क्रक्स है वो ये कि we need to learn this art, it's an art in itself, or it can be learned. Allah subhanahu wa ta'ala ne bhi kaha na, man laysa lil insani illa ma sa'a, insaan ko milega wohi jiski wo koshish karega. Jo parents bachchon mein invest karenge in the right way, तो आई थिंक कि पॉसिबल ही नहीं कि उसका रिटर्न जो है वो उन्हें
हमारी नई जो जनरेशन है वो बहुत तकलीफ में है, तो हमें उसके हार्ट को टच करना है. और मेरा ख्याल है पेरेंट्स से बढ़ के कोई भी इस पोजीशन में नहीं है जो हार्ट को टच कर सके,
क्योंकि इमोशनल है वो. तो आई थिंक डीलिंग विद देम विद इमोशंस इज द राइट
अप्रोच. मोहब्बत एक ऐसी चीज है, और जो पेरेंट्स की जो वेलफेयर और जो वेल विशिंग है, ये इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए हर बच्चा उसका वो है. इट्स ईजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज यू आर थिंकिंग इट. सो जस्ट गो हैड, अल्लाह विल हेल्प यू, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे इसमें.
एक आंटी बस मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो हमने बात यहाँ से शुरू की थी, फिर हम वाइंड अप करेंगे, कि ये जो केस मैंने आपके सामने रखा कि अब वो साफ नज़र आ रहा है मदर को कि बच्ची गलत कामों में इन्वॉल्व है, तो उसको निकालने के लिए मोबाइल छीन लिया, और उसके बाद उसका बहुत एग्रेसिव एक बड़ा शॉकिंग रिएक्शन आया. उस केस में जस्ट लास्ट फ्यू वर्ड, उस केस में क्या करें मदर, पेरेंट क्या करें? काउंसलिंग कराए, खुद तो हाथ से निकल गई उनके.
इफ आई पुट माई सेल्फ इन हर शूज, तो मैं पता क्या करूंगी. ठीक है, वो छुरी निकालने वाला इवेंट चला गया, माँ को भी तकलीफ पहुंची, बेटी को भी तकलीफ. शी वाजंट हैप्पी आफ्टर डूइंग दैट.
सही.
बच्ची भी वो छुरी निकाल के खुश नहीं हुई. ठीक है, अब दोनों थोड़े से टोन डाउन कर रहे हैं. अब मेरा ख्याल बैठा जाए और एक मिडल ग्राउंड के ऊपर जो है ना वो एग्री किया जाए.
Very
दोनों
nice,
मिलके
nice. hmm.
होगा पता है कि अब माँ तो पास कर लेगी, बच्ची नहीं पास करेगी. मुझे भी पता है और आपको भी पता है, वो तो फॉरन एक वीक मोमेंट में आके वादा तो कर बैठी है कि उसने एक डिसिप्लिन जो है ना वो फॉर्म कर लिया कि चले जी मैं इस सिस्टम पर चलूंगी. अब माँ आपने भी कह दिया, और दिस शुड बी हैपनिंग आफ्टर ऑल दोज यू नो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है, वी एग्री ऑन सम मिडल वे. अब होगा क्या कि बच्ची एक दिन तो पास करेगी, दूसरे दिन नहीं करेगी ना. ठीक है ना, यहाँ पर अगेन वो मैं दोबारा सुपर नैनी की तरफ लेके जाऊंगी. हमें एक दफा जो है ना बैड हैबिट का साइकिल तोड़ने के साथ रिवॉर्ड और रिप्रिमेंड के साथ मुस्तकिल वर्किंग करनी पड़ेगी. और एक दफा एक फेज को अचीव, एक गोल को अचीव करने के बाद दो तीन हफ्ते के बाद दोबारा भी होगी. ठीक है, और हमें ये समझना है कि कॉन्स्टेंटली दिस इज माई जॉब टू डू दैट. और दैट्स व्हाट अपनी पूरी जिंदगी की हम एफर्ट्स इन बच्चों के लिए तो करते हैं, तो ये भी उसी का पार्ट है. हमने सोचा कि शायद इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम किसी और ने करना है, हमने सिर्फ इनको कपड़े पहनाने हैं या चूमना है, ऐसा नहीं है.
यानी जब वो गश ऑफ इमोशंस थोड़ा सा थम जाए आपके भी बच्चे के भी, तो फिर सिट टुगेदर, कनेक्ट विद दैट चाइल्ड, थोड़ा सा दिल की बातें करें वगैरह वगैरह, इमोशंस.
और अभी आपने एक बात अपनी बहन के बच्चों के लिए जब आप कह रहे थे ना, कई दफ़ा एक मोनोटोनियस एनवायरनमेंट से बच्चे उसमें समझना बंद कर देते हैं. उसमें बहुत अच्छी बात रहती है कि थोड़ा सा किसी काउंसलर, किसी शेख, किसी भाई,
कोई रिलेटिव हो सकता है, मामू हो सकता है, कोई भी,
उनके साथ बिठाया जाए. मैंने देखा है कि वो एक समझाते, वो एग्जैक्टली वही बात है, आप भी वही बात समझाते जो उनकी अम्मा समझाती, लेकिन आप चूंकि अप्रोच डिफरेंट रखते हैं तो एकदम इट बिकम्स अ ब्रेथर ऑफ फ्रेश ब्रीज. तो लेट अस डू दैट.
एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर आंटी. इंशाल्लाह आपके साथ मजीद करते रहेंगे प्रोग्राम. Thank you for giving your opinions. May Allah bless you in your knowledge and action. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.